بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. پیش خدمت ہے ابن صفی کی جاسوسی دنیا، نوبل نمبر 105، دھواں ہوئی دیوار، تحریر ابن صفی اور پیشکش قصبہ آڈیو لائبریری. دیگر معلومات یا مزید کتابوں کے لیے اس نمبر پہ رابطہ کریں 03212138225، یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.qurtaba.org. تو آئیے سنتے ہیں ناول دھواں ہوئی دیوار، پارٹ 1.
جاسوسی دنیا نمبر 105، دھواں ہوئی دیوار، مکمل ناول. پیش رس جاسوسی دنیا کا 105واں ناول دھواں ہوئی دیوار حاضر ہے. آئندہ کہانیوں سے متعلق کچھ تجاویز موصول ہوئی ہیں. تجاویز کہانی تو کیا، پیش رس تک کے سلسلے میں موصول ہوتی ہیں، یعنی کہ مجھے کس قسم کا پیش رس لکھنا چاہیے. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ اب آپ نے پیش رس میں پڑھنے والوں کے سوالات کے جواب کا سلسلہ کیوں بند کر دیا ہے، نہ صرف یہ پوچھا بلکہ ایک عدد سوال بھی رسید کر دیا ہے، اور اس پر مصر ہیں کہ اس کا جواب پیش رس ہی میں دیا جائے. سوال یہ ہے کہ آپ سیاست میں کس عزم کے قائل ہیں. ان کی خدمت میں عرض ہے کہ یہ بیچارے دو صفحات آپ کے سوال کے جواب کے متحمل نہ ہو سکیں گے، لیکن اگر آپ نے پبلک کے فائدے کے لیے یہ سوال کیا ہے تو مجملن عرض ہے کہ قریب قریب سارے ہی ماڈرن ازم میرے مطالعے میں آ چکے ہیں، لیکن میں قائل کسی کا بھی نہیں. میں تو اللہ کی ڈکٹیٹرشپ کا قائل ہوں. اس میں اس کی گنجائش نہیں ہوتی کہ جب جتنے پگ کا نشہ ہو ویسا ہی بیان داغ دیا. آپ بھی کسی ازم وزم کے چکر میں پڑنے کے بجائے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. اسلام کے علاوہ اور سارے ازم محض وقتی حالات کی پیداوار ہیں، اور کسی ایک ازم کی کوئی دشواری کسی زمانے میں دوسرے ازم کی پیدائش کا باعث بنتی رہی ہے. اسلام کے علاوہ دنیا کا کوئی عزم اپنے حرف آخر ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. اسلامی نظام حیات آج بھی قابل عمل ہے، لیکن اس کے لیے انفرادی طور پر ہر آدمی کو ایماندار بننا پڑے گا، اور یہ بے حد مشکل کام ہے. لیکن اس مشکل کا بھی آسان ترین حل بعض یار لوگ یہ بتاتے ہیں کہ عبادت محمد رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر کر لو، اور روٹی کے لیے کسی یہودی کے در پر ہاتھ پھیلاؤ، کوئی مذائقہ نہیں. لیکن میرے بھائی، میں روٹی بھی اسی اصول کے تحت چاہتا ہوں جس کے تحت عبادت کرتا ہوں. بس میرا سیاسی رجحان اللہ کی ڈکٹیٹرشپ کا قیام اور میرا فن سکھاتا ہے قانون کا احترام. والسلام ابن صفی، 3/3/1966. صفحہ نمبر 277. بوڑھے کی کم آئی. گھوڑے تیزی سے دوڑ رہے تھے، اور سواروں کا یہ عالم تھا کہ ان میں سے کئی تو ڈر کے مارے گھوڑوں کی گردنوں سے لپٹ گئے تھے. اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، کبھی نہیں، کیونکہ وہ تفریح گاہوں کے سیدھے سادے ٹھنڈے مزاج والے گھوڑے تھے. ایسے بے ضرر کے اناڑی قسم کے سیاح بھی گھوڑے سواری کا شوق پورا کر سکیں. رام گڑھ کے کئی بڑے ٹھیکیدار اس کے لیے گھوڑے پالتے تھے، اور سیزن میں اچھا خاصا بزنس کر لیتے تھے. سیاحوں کی ٹولیاں ان گھوڑوں کو کرائے پر حاصل کرتی اور پہاڑوں کی سیر کا لطف اٹھاتی. وہ آہستہ آہستہ راستہ طے کرتے، بڑی متانت سے چلتے. بالکل ایسا لگتا جیسے یہ گھوڑے بھی فلسفے کے کسی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں. نہ شوخی نہ شرارت، اپنے جانے پہچانے راستوں پر خود ہی چلتے رہتے. نہ اڑتے اور نہ مہمیز کی ضرورت پیش آتی. ایسے گھوڑے جب بے وجہ جی چھوڑ کر بھاگنا شروع کر دیں تو بات تشویش ہی کی ٹھہرے گی. اس ٹولی میں 8 آدمی شامل تھے، ویسے تو وہ ساتھ ہی تھے، لیکن 8واں محض اس لیے شامل ہو گیا تھا کہ ان کے ساتھ 2 لڑکیاں بھی تھیں، گوری چمڑی والی لڑکیاں. اور یہ 8واں آدمی کیپٹن حمید تھا. رام گڑھ آیا تھا ایک سرکاری کام سے، لیکن سرکاری کام بھی ہر وقت تو ہوتا نہیں رہتا. تنہا تھا اسی لیے کٹے ہوئے پتنگ کی طرح ادھر ادھر ڈولتا پھرتا. واپسی میں صرف 2 دن باقی تھے، لہٰذا اس نے سوچا کہ یہ 2 دن غیر سرکاری طور پر گزارے جائیں. اس نے خود ہی کوشش کی تھی کہ کام 2 دن پہلے ہی نپٹ جائے. روانگی کی تاریخ مقرر تھی، ورنہ اس کی ضرورت پیش نہ آتی. اور روانگی کی تاریخ اس لیے مقرر تھی کہ فریدی نے فضائی سفر کے لیے واپسی ٹکٹ خرید کر دیا تھا، اور واپسی کے لیے بھی سیٹ مخصوص کرا دی تھی. बहरहाल आज उसे इस टोली में दो ऐसी लड़कियां नजर आईं जिनका सरपरस्त एक बूढ़ा आदमी था। बकिया चार भी कुछ चगद ही से लग रहे थे। उसने सोचा अच्छा वक्त गुजरेगा। उन लोगों ने घोड़ों पर सैर की ठहराई। हमीद ने आगे बढ़कर बूढ़े आदमी से कहा, अगर आप लोग मुनासिब समझें तो मैं भी इस टोली में शरीक हो जाऊं, तन्हा हूं। बूढ़े ने उस पर कोई एतराज नहीं किया था और लड़कियों ने हंस हंस कर उसका इस्तकबाल किया था। और वो चार आदमी कतई बेताल्लुक रहे थे, वो भी सफेद फाम ही थे लेकिन जिंदा दिल मालूम नहीं होते थे। उनके बरखिलाफ बूढ़ा हंसोड़ और हाजिर जवाब था। तुम खुद को तन्हा कहते हो, वो हमीद के चेहरे के करीब उंगली नचाकर बोला था। अच्छे लड़के, यहाँ कोई भी तन्हा नहीं है, आप तो फलसफियाना अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं, हमीद ने यूं ही मक्खन लगाने कैसे अंदाज में कह दिया था। और वो उसका हाथ गर्म जोशी से दबाता हुआ बोला था, बढ़ती हुई उम्र बेहतरीन उस्ताद होती है लेकिन उसे अपने ऊपर इस तरह नातारी करना चाहिए कि आदमी सचमुच बूढ़ा मालूम होने लगे। हमीद इस जवाब पर मगन हो गया था। उसका ख्याल था कि खूबसूरत लड़कियों के सरपरस्तों को नजर ना होना चाहिए। फिर वो सब घोड़ों पर बैठ गए थे और बूढ़े ने हमीद से कहा था कि वो उसके लिए गाइड के फराइज बखूबी अंजाम दे सकेगा क्योंकि हर सीजन में रामगढ़ आता था और तुम कह रहे थे कि तन्हा हो। अरे बेटे, अपने माहौल से निकल भागने की ख्वाहिश जब तक जिंदा है कोई आदमी तन्हा नहीं। बूढ़े ने कहा था, तन्हा तो सिर्फ वो है जो अपने माहौल से ज़हनी फरार भी नहीं कर सकता। हमीद ने बात बढ़ाई थी और उन लड़कियों का तनकीदी जायजा लेता रहा था। घोड़े मामूल के मुताबिक चलते रहे थे। हमीद और बूढ़ा आदमी साथ ही थे, लड़कियां सबसे आगे थीं। बूढ़ा उसके कान चाटे जा रहा था। वो दरअसल किसी जमाने में फुटबॉल का खिलाड़ी रह चुका था, एक मशहूर खिलाड़ी जिसका नाम हमीद के लिए भी नया नहीं था। बूढ़ा खुद ही अपने बारे में उसे सब कुछ बताने लगा था। दोनों लड़कियों में से एक भतीजी थी और दूसरी बेटी। भतीजी का नाम इरमा था और बेटी का सिलोमी। बूढ़े ने बताया कि उसकी बीवी फ्रेंच थी और वो खुद अंग्रेज है। और ये चारों, हमीद ने पूछा, मैं नहीं जानता, सच पूछो तो उनके नाम भी याद नहीं, और नाम याद भी क्यों रखे जाएं? कल मैं कहीं और होऊंगा और तुम कहीं और, मुझे तुम्हारा नाम भी याद नहीं रहा। या तो ये लोग बदखलाक हैं या फितरतन खामोशी पसंद, हमीद ने कहा था। कुछ भी हो, आदमी है और आदमी आदमी का मोहताज है, चाहे वो उसे एक आंख ना भाता हो। हम सब एक ही होटल में मुकीम हैं। सच मुझ के होटल की बात कर रहे हो या इस लफ्ज को भी दुनिया की मिसाल समझूं? नहीं, बूढ़ा उसे गौर से देखता हुआ हंसकर बोला था, सच मुझ के होटल की बात कर रहा हूँ, इसमें इस्तेआरे या तशबीह को दखल नहीं। वैसे तुम मुझे ज़हीन आदमी मालूम होते हो, आज मौसम अच्छा है, हमीद ने बात का रुख अपनी तरफ मुड़ते देखकर कहा। मैं समझा तुम अपने बारे में बात नहीं करना चाहते। बिल्कुल सामने की चीज है मौसम, हमीद ने भी हंसकर कहा था, जब और जहाँ जी चाहे उसे खींच मारो। वो चलते रहे थे। फिर उन चारों में से एक का घोड़ा अचानक भड़का था और सबसे आगे चलने वाली लड़कियों के घोड़ों के दरमियान से निकला चला गया था और फिर सारे ही घोड़े भागने लगे थे। ऐसा मालूम होता था जैसे सब उस घोड़े का ताकुब कर रहे हों। बूढ़ा चीख चीख कर लड़कियों से कह रहा था, चिमट जाओ, उनकी गर्दनों से चिमट जाओ, लगामें छोड़ दो, चिमट जाओ। वो घोड़ा सबसे आगे जा रहा था और सब उसके पीछे थे। ये एक पहाड़ी सड़क थी जिस पर जगह जगह मोड़ थे, ढलाने थी, चढ़ाइयाँ थी और अतराफ में गहरे खड्ड थे। यहाँ इस किस्म की घोड़दौड़ जानलेवा साबित हो सकती थी। हमीद ने शहसवारी के सारे गुर आजमा डाले लेकिन उसका घोड़ा किसी तरह काबू में न आया। लड़कियों की चीखें फिजा में गूंज रही थीं, साथ ही बूढ़ा भी चीख चीख कर उन्हें हिदायत देता जा रहा था। फिलहाल गनीमत यही था कि घोड़े आगे पीछे दौड़ रहे थे। अगर इनमें से कोई भी दूसरे के बराबर पहुँचने की कोशिश शुरू कर देता तो इनमें से एक यकीनी तौर पर सवार समेत बाईं जानिब वाली तवील खड्ड में जा पड़ता। बूढ़े का घोड़ा हमीद के आगे था। उसने उससे चीख कर कहा, देखो कोशिश करो कि दो घोड़े बराबर दौड़ने ना पाएं। ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? बूढ़ा हलक پھاڑ کر چیخا، میری بچیاں، حمید اسے کیا بتاتا کہ کیا ہو رہا ہے، جبکہ وہ خود ہی سمجھنے سے قاصر تھا۔ اور رہ گئی بچیاں تو اس وقت اسے خود اپنی نانی جان یاد آ رہی تھی، پرائی بچیوں کی کھکھیڑ میں کہاں پڑتا۔ ایسے میں نہ گھوڑے کی زین سے جست لگائی جا سکتی تھی اور نہ ہی لگام ہی کھینچی جا سکتی تھی۔ یہ واقعہ اگر کسی میدانی علاقے میں پیش آیا ہوتا تو گھوڑے پر قابو پانے کی 100 تدبیریں ہو سکتی تھیں، لیکن یہاں ذرا سی لغزش بھی بائیں جانب والی کھڈ میں لے جاتی، اور اب تو اسے گھوڑے کی گردن ہی سے چمٹنا پڑا تھا۔ اور وہ سوچ رہا تھا کہ یہ ہے ایڈونچر، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، بوڑھا چیخ رہا تھا۔ ایک بوڑھا کیا، اب تو حمید کے علاوہ سبھی چیخ رہے تھے، سڑک سنسان تھی۔ حمید سوچ رہا تھا کہ اگر آگے سے کوئی گاڑی سامنے آ گئی تب بھی موت ہی کا سامنا ہوگا، کیا کیا جائے، کیا کیا جائے۔ پھر وہ سوچنے لگا کہ بھلا یہ موت کس قسم کی ہوگی۔ برخوردار حمید سلمو محض دو خوبصورت چہروں کے لیے جہاں نم رسید ہوئے ہی ہاتھ، اور وہ دونوں چہرے اس وقت خوف کے مارے کتنے قریح اور ہیبتناک نظر آ رہے ہوں گے۔ ہیلو فیریز، کیا اس وقت تم اس تانجار میں دلچسپی لینے پر تیار ہو سکو گی؟ ابے آدمی، تیری دم میں نمدہ، حد تیری کی۔ اور پھر وہ بلند آواز میں خود کو گالیاں دینے لگا۔ لڑکے، میرے دوست، میرے بھائی، اب بتاؤ کیا کریں، بوڑھا اس کی آواز سن کر چیخا۔ دو لڑکیاں اور پیدا کرو، حمید دھاڑا، کیا کہہ رہے ہو، یہ مذاق کا وقت نہیں ہے۔ کچھ دیر پہلے بڑا رجائی فلسفہ بکھار رہے تھے، کہہ لگاؤ نا۔ بوڑھا خاموش ہو گیا۔ پھر حمید کو خیال آیا کہ آخر وہ گالیاں کیوں بک رہا ہے، اسے تو کلمہ پڑھنا چاہیے، سنا ہے مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لینے سے آدمی پر دوزخ کی آنچ حرام ہو جاتی ہے، لیکن میں کس منہ سے کلمہ پڑھوں، وہ حلق پھاڑ کر چیخا۔ کیا کہہ رہے ہو، بوڑھے کی ڈری ڈری سی روحان سی آواز آئی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تمہاری کمائی مجھے جہنم میں لے جائے گی۔ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہو، آخری دعا پڑھ ڈالو، ان قریب ہم دوسری دنیا میں پہنچنے والے ہیں۔ نہیں، بوڑھا چیخا۔ حمید نے پھر زبان بند کر لی۔ اب گھوڑے ایسی جگہ پہنچ چکے تھے جہاں سڑک کی دونوں جانب اونچی اونچی چٹانوں کے سلسلے تھے۔ حمید کی جان میں جان آئی، اسے معلوم تھا کہ اب میلوں تک کھڈوں کی بجائے ایسے ہی چٹانوں کے سلسلے ملیں گے۔ جان میں جان آئی، اور ساتھ ہی اس کے ذہن نے بھی کلابازی کھائی، کہاں ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ گناہگار زبان سے کلمہ کیوں کر پڑھے، اور کہاں یہ سوچنے لگا کہ عورت اور زندگی سے پیار کرنا گناہ تو نہیں، گناہ ہوتا تو آدم کے پہلو سے بھی ہوا کیوں برآمد ہوتی۔ خطرہ ٹل گیا، اس نے چیخ کر بوڑھے کو مخاطب کیا، کیا کہہ رہے ہو، کھڈ میں نہیں گریں گے، گھوڑے سے چمٹے رہو، میری طاقت جواب دے رہی ہے، ہمت کرو، اپنے ذہن کو سونے نہ دو۔ لیکن یہ کیا ہو رہا ہے، گھوڑے سے چمٹے رہو اور کسی بات کی پرواہ مت کرو، کہیں تو تھک کر رکیں گے یہ مردود۔ وہ جانتا تھا کہ اب جو چڑھائی آنے والی ہے یقینی طور پر ان گھوڑوں کو تھکا دے گی، اور یہی ہوا بھی۔ اچانک انہوں نے رکنا شروع کیا اور وہ لوگ ایک ایک کر کے گھوڑوں سے کودنے لگے، لیکن ان میں ایک آدمی نہیں تھا، ویسے فوری طور پر کسی نے بھی اس کی پرواہ نہ کی۔ لڑکیاں زمین پر قدم رکھتے ہی بے ہوش ہو گئی تھیں، ایک کو بوڑھے نے سنبھالا تھا اور دوسری کو حمید نے، بقیہ تینوں آدمیوں نے ان کی طرف توجہ تک نہیں دی تھی۔ آٹھوں گھوڑے موجود تھے لیکن آٹھویں آدمی کا کہیں پتہ نہیں تھا، اور یہ آٹھواں آدمی وہی تھا جس کا گھوڑا سب سے پہلے بھڑک کر بھاگا تھا۔ گھوڑے کھڑے ہانپ رہے تھے، پھر وہ ایک ایک کر کے گرنے لگے، ان کے دبانوں سے جھاگ اور خون جاری تھا۔ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، تینوں آدمی چیخنے لگے۔ بوکھلانا تو حمید کو بھی چاہیے تھا، لیکن فی الحال وہ سلومی کو ہوش میں لانے کی جدوجہد کر رہا تھا۔ پھر ان تینوں میں سے کوئی بولا، ارے ارے وہ کہاں گیا وہ، ہاں ارے وہ، دوسرا بولا، کون؟ حمید نے چونک کر پوچھا۔ کوپر، ہائیں وہ نہیں ہے، بوڑھا بھی چونکا، نہیں وہ نہیں ہے، تینوں نے ایک ساتھ کہا۔ بچاؤ بچاؤ، دفتن سلومی چیخی۔ حمید نے اسے اپنے بازوؤں میں سنبھال رکھا تھا۔ ہوش میں آؤ، تم محفوظ ہو، بعافیت ہو، وہ اس کے کان میں گنگنایا، اور سلومی نے آنکھیں کھول دی۔ ہم سب محفوظ ہیں، حمید آہستہ سے بولا، ڈیڈی اور ارما وہ ٹھیک ہیں۔ اور پھر وہ سنبھل کر بیٹھ گئی۔ बूढ़ा इरमा पर झुका हुआ था। अब तुम हटो, उसे भी मैं ही होश में लाऊंगा, हमीद उसके करीब पहुंचकर बोला। बूढ़ा उसे हमीद के हवाले करके सिलोमी की तरफ बढ़ गया था। हमीद इरमा के कान के करीब मुंह ले जाकर बड़बड़ाने लगा, होश में आओ, बेहोशी तो हम जैसे उल्लू के पट्ठों का मुकद्दर है, तुम्हें सिरापा होश होना चाहिए। लेकिन इरमा की आंखें ना खुली। इतने में बूढ़े ने फिर उसे आवाज दी, अरे देखो ये फिर बेहोश हो गई। सब ठीक है, हमीद लापरवाही से बोला और इरमा की हथेलियां सहलाने लगा। क्या ठीक है, बूढ़ा झुंझला गया, ये बेहोशी नहीं है, उसे हमारी जबान में नखरा कहते हैं। नखरा क्या इधर होता है या तुम्हारी तरफ ना होता होगा? क्या ना होता होगा, मुझे नखरे की अंग्रेजी नहीं मालूम। खैर खैर, तुम नखरे का इलाज बताओ। थप्पड़, तुम शायद अब भी खौफजदा हो। नहीं भला, बेहोश लड़कियों से क्या खौफ। हाँ वो जरूर खौफनाक होती हैं जो बेहोशी पोज करती हैं। पता नहीं कैसी बातें कर रहे हो तुम। इतने में इरमा के जिस्म में जुम्बश हुई और हमीद ने होंठों पर उंगली रख कर बूढ़े को खामोशी रहने का इशारा किया। बूढ़ा फिर सिलोमी की तरफ मतवज्जो हो गया था, वो उसकी बेटी थी। दफतन इरमा ने आंखें खोल दी। मुबारक हो, हमीद मुस्कुराया, तुम महफूज हो। अंकल कहाँ है, सिलोमी कहाँ है? वो देखो, हमीद ने बाईं जानिब इशारा किया, मुझे सहारा दो, मैं खुद से नहीं उठ सकती। हमीद ने हाथ पकड़कर उसे उठाया और उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उन दोनों के करीब आया। अरे वाह, हमीद बूढ़े के शाने पर हाथ रखकर बोला, मैंने बेहोशी दूर की थी और तुम नखरा नहीं संभाल सके, तुम ही कोई तदबीर करो, बूढ़े ने बेबसी से कहा। इरमा सिलोमी के करीब बैठ गई थी, यक बयक उसने रोना शुरू कर दिया। अरे अरे ये क्या, बूढ़ा इरमा का शाना थपक कर बोला, ये बिल्कुल ठीक है, अभी होश में आ जाएगी, इसे चोट नहीं आई। इरमा और ज्यादा बिलबिला कर रोने लगी। मैं लड़कियों को रोते नहीं देख सकता, हमीद ने बूढ़े से गुलगीर आवाज में कहा। ऐसा लगता था जैसे अब वो भी रोना शुरू कर देगा। इतने में वो तीनों भी उनके करीब आ गए और उनकी खैरियत दरियाफ्त करने लगे। एक ने हमीद से कहा, तुम मकामी आदमी हो, हमें बताओ कि अब क्या करें। यहाँ से पैदल शहर की तरफ, हमीद ने लापरवाही से कहा, लेकिन घोड़ों की जवाबदेही कौन करेगा? दफतन हमीद चौंक पड़ा, वो कहाँ है? तुम्हारा एक और साथी, उसने सवाल किया। पता नहीं, लेकिन उसका घोड़ा मौजूद है, एक बोला, और उसी का घोड़ा भड़क कर भागा था, दूसरे ने कहा, और फिर सभी भागे थे उसके पीछे, तीसरा बोला। कहीं वो किसी खड्ड में तो नहीं गिर गया, हमीद ने पुरतश्वीश लहजे में कहा। खुदा जाने, अपना ही होश नहीं था, इस पर क्या ध्यान देते। अच्छी बात है, कुछ देर यहीं ठहर कर आसमान से आने वाली मदद का इंतजार करना चाहिए, हमीद बोला। लेकिन घोड़ों ने अचानक दौड़ना क्यों शुरू कर दिया था? बूढ़े खिलाड़ी ने हमीद की आंखों में देखते हुए सवाल किया, अगर मैं घोड़ा होता तो पहले ही बता देता। तुम पता नहीं कैसे आदमी हो, बूढ़े ने गुस्सीले लहजे में कहा और फिर सिलोमी की तरफ मतवज्जो हो गया। दफतन हमीद ने ऐसे अंदाज में हाथ उठाकर उन्हें खामोश रहने का इशारा किया, जैसे कुछ सुनने की कोशिश कर रहा हो। वो चुप होकर हैरत से उसे देखने लगे और फिर थोड़ी ही देर बाद वो भी इसी आवाज की तरफ मतवज्जो हो गए। ये किसी गाड़ी की आवाज थी। हमीद ने मायूसी से मुर्दा घोड़ों की तरफ देखा, जिन्होंने सड़क की पूरी चौड़ाई घेर ली थी। और फिर जरा ही सी देर बाद मुखालिफ सिम से एक ट्रक मुर्दा घोड़ों के करीब आकर रुका। ड्राइवर की सीट पर बैठे हुए आदमी का मुंह हैरत से खुल गया था। चंद लम्हे वो बेहिसो हरकत सीट पर बैठा रहा, फिर नीचे उतर कर उनके करीब आया। ये क्या हुआ साहब, उसने हमीद से पूछा। रामगढ़ से तफरी के लिए चले थे, पता नहीं कैसे सारे घोड़े बेकाबू हो गए। ये लाशें उनकी तेज रफ्तारी का नतीजा हैं और हमारा एक साथी भी गायब है। बड़ी अजीब बात है, आखिर वो किस चीज से भड़के थे? हमारे मुकद्दर से, इसके अलावा और क्या कहा जा सकता है। लेकिन साहब ट्रक कैसे आगे जाए? हम सब उसे कंधे पर उठाकर लाशें पार करा देंगे, हमीद बुनकर बोला। नामुमकिन है, वो मायूसाना अंदाज में सर हिलाकर बोला, मुझे वापस जाना पड़ेगा। खैर कोई परवाह नहीं, सिर्फ 15 मील का फर्क पड़ेगा, आज ही रामगढ़ पहुंचना जरूरी है। मियां तो हमें भी लेते चलो, हमीद बोला। शौक से जनाब, लेकिन बहुत दूर तक गाड़ी रिवर्स गियर में चलानी पड़ेगी, यहाँ मोड़ने की जगह कहाँ? फिक्र न करो, हमीद उठता हुआ बोला। सिलोमी अब भी आंखें बंद किए पड़ी थी और इनका क्या होगा। इनमें से एक ने मुर्दा घोड़ों की तरफ इशारा किया, अपने मसाइल खुद हल कर लो। हमीद बुरा समूह बनाकर बोला, जो मेरी सवारी में था मेरा नाम नहीं जानता था, लिहाजा क्या तुम। फिर बूढ़े की मदद से उसने बेहोश लड़कियों को ट्रक में डाला और इरमा को भी सहारा देकर ऊपर चढ़ा दिया। ट्रक ड्राइवर इंजन स्टार्ट करते वक्त कुछ बुड़बुड़ाया था और जैसे ही इंजन स्टार्ट हुआ सिलोमी हड़बड़ाकर उठ बैठी। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें होश में लाने के लिए हॉर्स पावर जरूरी है। हमीद ने जोकर उसके कान में कहा था, वो आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखने लगा। ओह मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, बूढ़ा मुतरबाना अंदाज में उस पर झुक पड़ा और दूसरे लोग भी उसकी खैरियत दरियाफ्त करने लगे। ये सब क्या हो रहा है, वो कब तक कपाती हुई आवाज में बोली। अभी किसी को कुछ नहीं मालूम कि क्या हो रहा है, हमीद की जबान से बेसाख्ता निकल गया। तुम कितने बेदर्द हो, बूढ़े ने हमीद के शाने पर हाथ रखकर भराई हुई आवाज में कहा। क्या तशफी के दो बोल तुम्हारी जबान से नहीं निकल सकते, मुझे अफसोस है। तो देखो बेबी, अगर फिलहाल कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो उसकी तरफ से आंखें बंद कर लो, रफ्तार रफ्तार सब समझ में आ जाएगा। देखो ये पहाड़ कितने खूबसूरत हैं, यहाँ अगर खाना नसीब ना हो तो आदमी जड़ी बूटियाँ खा कर पेट भर सकता है। डैडी ये कौन है और क्या बक रहा है, सिलोमी ने बूढ़े से पूछा। क्या फिर कुछ गलती हो गई, हमीद ने भी बूढ़े ही से बड़ी मासूमियत से पूछा। खुदा के लिए तुम खामोश ही रहो, बूढ़े ने कहा और सिलोमी को थपकने लगा। ट्रक उल्टा चल रहा था, हमीद ने सोचा कि अब उधर ही ध्यान रखना चाहिए वरना हो सकता है कि किसी चट्टान से टक्कर हो जाए। वो ड्राइवर को हिदायत देता रहा। बहुत दूर तक रिवर्स गियर में चलते रहने के बाद ट्रक एक पुल पर पहुंचा, जिसकी बाईं जानिब ढलान में दूर तक ऐसा रास्ता नजर आ रहा था कि ट्रक बआसानी गुजर सकता। ट्रक उधर ही मोड़ दिया गया और हमीद फिर सिलोमी के करीब आ बैठा। आज की तफरी मुझे जिंदगी भर याद रहेगी, बूढ़ा बोला। तुम इससे लुत्फ अंदोज हुए हो या तासुफ के साथ कह रहे हो, हमीद ने सवाल किया और बूढ़ा इस तरह उसे घूरने लगा जैसे उसके सही दिमाग होने में शुबा हो। तुम कभी आदमियों में रहे हो, बिलाखिर उसने गुस्सीले लहजे में पूछा। यकीनन रहा हूँ और इस पर मुझे अफसोस है, हमीद ने अपने सर को मायूसाना जुम्बश दी। दोनों लड़कियाँ उसे घूरे जा रही थी। दफतन उन तीनों में से एक ने हमीद को मुखातिब करके कहा, अगर कोपर ना मिला तो हम तुम्हें बताएंगे। क्या मतलब, ये सब तुम्हारी शरारत थी, तुमने उसके घोड़े के साथ कोई हरकत की थी। हमीद सन्नाटे में आ गया, वो तीनों ही उसे खूनख्वार नजरों से घूर रहे थे। जानबाज हीरो, उन तीनों के चेहरों पर शदीद तरीन नफरत के आसार थे। हमीद ने सोचा अगर इस वीराने में बात बिगड़ गई तो संभाले नहीं संभलेगी, इसलिए उन्हें दलाल से राम करने की कोशिश करनी चाहिए। लिहाजा वो बूढ़े से मुखातिब होकर बोला, तुम क्यों खामोश हो, मैं तो तुम्हारे ही साथ था। मैं नहीं समझ सकता कि ये लोग क्या कहना चाहते हैं, बूढ़े ने मुतहयराना अंदाज में पलके झपकाई। उसने कोपर के घोड़े के साथ कोई हरकत की थी, ये गलत है, मैं अंधा नहीं था। तुम्हें होश ही कब रहा होगा, क्या दफतन बूढ़ा गुर्राया, तुम क्या समझते हो मुझे, मैं जिंदगी में पहली बार तो घोड़े पर नहीं बैठा था। उसके बाद ये हुआ कि बूढ़ा, उसकी लड़की और हमीद तो एक तरफ और दूसरी तरफ वो तीनों अच्छी खासी ठन गई। तीनों आपे से बाहर हो रहे थे और हमीद हंस हंसकर उन्हें चिढ़ा रहा था। बाद जुमलों पर बूढ़ा भी हंस पड़ता और लड़के तो हंस ही रही थी। दफतन ट्रक का इंजन बहुत ज्यादा शोर मचाकर बिल्कुल खामोश हो गया। ट्रक धचके के साथ रुका था, ये क्या हरामीपन हो गया, ड्राइवर की आवाज आई। क्या हुआ, हमीद ने पूछा। इंजन बंद हो गया, ड्राइवर ने नीचे उतरकर कहा। इस खबर से उनके आपस के झगड़े का सिलसिला खत्म हो गया। ड्राइवर ने बोनेट उठा दिया था और इंजन पर झुका हुआ उसका जायजा ले रहा था। हमीद भी नीचे उतर आया। फ्यूल पंप खराब हो गया है, ड्राइवर ने उसकी तरफ मुड़कर गुस्सीले लहजे में कहा। इतनी जल्दी फैसला ना करो, हमीद ने नरम लहजे में कहा। कार्बोरेटर देख लो, कहीं उसमें कचरा ना आ गया हो, बड़े मिस्त्री बनते हो तो खुद ही देख लो ना। ड्राइवर ने आंखें निकाली। खफ होने की क्या बात है प्यारे भाई, मैं देख लेता हूँ। नहीं, इंजन को हाथ न लगाना, कुछ और घपला हो गया तो खान मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो फिर क्या ये ट्रक खड़ा रहेगा? नहीं, मैं जा रहा हूँ खान को इत्तला देने। पैदल ही जाओगे? हाँ, ये रहा उधर, ज्यादा दूर तो नहीं, आप लोग यहीं ठहरे, हो सकता है खान आप लोगों की मदद कर सकें, बहुत मेहमान नवाज आदमी है। फिर वो उन्हें वहीं छोड़कर बांध जाने वाली एक चट्टान पर चढ़ा और दूसरी तरफ उतरता हुआ नजरों से ओझल हो गया। लड़कियों के अलावा और सभी गाड़ी से नीचे उतर आए। حمید نے انہیں ڈرائیور سے متعلق بتاتے ہوئے کہا، تم سب لوگوں کو محتاط رہنا چاہیے، ان اطراف میں اچھے لوگ نہیں رہتے، یہ بہت برا ہوا کہ ہمارے ساتھ لڑکیاں بھی ہیں۔ اور تم دفتن، ان تینوں میں سے ایک نے حمید کا گریبان پکڑتے ہوئے کہا، تم ان برے لوگوں کے ساتھ ہی ہو، یہ کیا بےہودگی، اپنا ہاتھ ہٹاؤ، حمید نے کہا۔ اور پھر جیسے ہی حریف کی نظر مزید بدلی ہوئی پائی، اس کے جبڑے پر ایک ہاتھ رسید کر دیا، وہ لڑکھڑاتا ہوا پیچھے ہٹا تھا اور اس کے دونوں ساتھی بھی حمید پر ٹوٹ پڑے تھے۔ بوڑھا چیختا ہی رہ گیا، وہ تینوں دیوانوں کی طرح حمید پر حملے کر رہے تھے اور وہ جھکائی دے دے کر ان پر گھونسے برسا رہا تھا۔ ارے یہ کیا ہونے لگا، بوڑھا چیختا رہا، کیا تم سب پاگل ہو گئے ہو، رک جاؤ رک جاؤ، اپنے ہاتھ روکو۔ حمید اس کشمکش کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن جب تک ان تینوں کے ہاتھ نہ رکتے، انسانیت کو دخل دینا حماقت ہی تھی۔ بالآخر بوڑھے نے لڑکیوں کو شاید اس پر آمادہ کر لیا کہ اس جھگڑے کو ختم کرانے کی کوشش کریں، کیونکہ اچانک وہ دونوں آگے بڑھی تھی اور ان کے درمیان آ گئی تھی۔ بس ارما ہاتھ اٹھا کر بولی، ختم کرو یہ احمقانہ حرکتیں۔ وہ تینوں رک گئے، بری طرح ہانپ رہے تھے۔ حمید کا خیال تھا کہ وہ خامخواہ الجھ پڑے ہیں، انہیں لڑائی بھڑائی کا تجربہ نہیں، یہ کتنی احمقانہ بات ہے۔ بوڑھا آگے بڑھ کر بولا، ہمیں چاہیے کہ ہم خود کو کسی اندیکھے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کریں، نہ کہ آپس میں دست و گریباں ہوں۔ کیسا اندیکھا خطرہ، ان میں سے ایک نے ہانپتے ہوئے پوچھا۔ ڈرائیور کی یہ حرکت مشتبہ ہے، بوڑھے نے کہا۔ اور پھر حمید کی طرف مڑ کر پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ فیول پمپ کی خرابی کے بارے میں اس کا بیان صحیح تھا؟ وہ اگنیشن کی کنجی ساتھ لے گیا ہے، ورنہ اس کی تصدیق ہو جاتی، حمید نے کہا۔ وہ خود کو اس طرح پوز کرنے کی کوشش کر رہا تھا جیسے کچھ پہلے کی لڑائی بھڑائی محض مذاق رہی ہو۔ میں جانتا ہوں کہ ان اطراف میں زیادہ تر قزاق آباد ہیں، انہیں موقع مل جائے تو اس سے پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تم مقامی آدمی ہو، ارما نے اس کا بازو چھو کر کہا، ہماری بہتری کے لیے کچھ سوچو۔ حمید جواب میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ ڈرائیور دکھائی دیا، وہ بائیں جانب والی چٹان سے نیچے اتر رہا تھا۔ حمید نے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا، وہ تینوں اب بھی اسے کینہ توز نظر سے دیکھے جا رہے تھے۔ ڈرائیور قریب آ گیا، اس کے چہرے پر سراسیمگی کے آثار تھے۔ کیا بات ہے، حمید نے پوچھا، ذرا ٹرک کو دھکا لگا کر ایک کنارے کرا دیجیے، خان خود آ رہے ہیں، ڈرائیور ہانپتا ہوا بولا۔ تو آنے دو، بیچارے ٹرک کو پریشان کرنے سے کیا فائدہ، ان کی جیپ کدھر سے نکلے گی، وہ ان مردہ گھوڑوں کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ میں سمجھا تھا شاید وہ ہم زندہ آدمیوں کو دیکھنے آ رہے ہیں، حمید برا سمو پہنا کر بولا۔ بھائی کیوں میری زندگی کے دشمن ہو، خدارا اپنے ساتھیوں سے کہو کہ ٹرک کو دھکا لگوائیں، خان بھیانک آدمی ہے، اگر ٹرک راستے میں حائل رہا تو مجھے گولی مار دے گا۔ حمید نے اپنے ساتھیوں کو اس گفتگو سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ ٹرک پر بیٹھ جائیں۔ میں نہیں سمجھا، بوڑھا بولا، باتوں میں وقت نہ ضائع کرو، مجھے یقین ہے کہ ٹرک کے انجن میں کوئی خرابی واقعہ نہیں ہوئی ہے، میں اس سے اگنیشن کی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، حمید نے کہا۔ اور اچانک ڈرائیور کی طرف مڑ کر ایک بھرپور ہاتھ اس کی کنپٹی پر رسید کر دیا۔ جس تلا ہاتھ تھا ڈرائیور پر ایسی غشی تاری ہوئی کہ پھر نہ اٹھ سکا۔ اب حمید بڑی تیزی سے اس کی جیبوں کی تلاشی لے رہا تھا، بلاخر اگنیشن کی کنجی ہاتھ آ ہی گئی، وہ لوگ اس دوران میں ٹرک پر بیٹھ چکے تھے۔ حمید اچھل کر ڈرائیور کی سیٹ پر بیٹھ گیا اور اگنیشن میں کنجی لگاتے وقت اسے احساس ہوا کہ ارما اس کے برابر ہی بیٹھی ہوئی ہے۔ حمید کا اندازہ غلط نہیں تھا، انجن آسانی سے اسٹارٹ ہو گیا، اس نے ٹرک کو پھر پل کی طرف موڑ دیا۔ اب کدھر چلو گے، ارما نے پوچھا، سڑک تک پہنچنا ضروری ہے، کہیں ہم گھیرے نہ لیے جائیں۔ بڑی تیز رفتاری سے وہ ٹرک کو پل تک لایا اور پھر گاڑی کو سڑک پر موڑ کر مخالف سمت میں چل پڑا۔ ادھر کہاں، رام گڑھ کی طرف واپسی ناممکن ہے، کیوں نہ ہم آگے ہی بڑھتے جائیں، کہیں تو کوئی محفوظ جگہ ملے گی، یہ لوگ تمہارے خلاف ہو رہے ہیں تو کیا بگاڑ لیں گے میرا، لڑکیوں کی موجودگی مجھے سپرمین بنا دیتی ہے، اگر تم دونوں نہ ہوتی تو یقیناً ان کے ہاتھوں پٹ جاتا، زندہ دل بھی معلوم ہوتے ہو، ارما مسکرائی۔ میں نے بہت دیر سے پائپ نہیں پیا تو پھر میں کیا کروں، اگر کچھ دیر اور نہ پیا تو زندہ دلی رخصت ہو جائے گی اور تم مجھے ایک جڑ چڑا آدمی کہو گی، میں کیا کر سکتی ہوں اس سلسلے میں، میری جیب سے تمباکو کی پاؤچ اور پائپ نکال کر اسے بھرو۔ ارما نے اس کی جیب سے پائپ نکالا اور اس میں تمباکو بھرنے لگی۔ دفتن پچھلے حصے سے بوڑھے نے چیخ کر کہا، ایک گاڑی ہمارے پیچھے ہے، فکر نہ کرو، حمید نے کہا اور ایکسیلیریٹر پر مزید دباؤ ڈالتا ہوا ارما سے بولا، ان کی بستی سے دور میں ان سے نپٹ لوں گا، آخر یہ آدمی کون ہے اور کیا چاہتا ہے، ان بستیوں میں عورتوں کی کمی ہے۔ کیا مطلب، دفتن پیچھے سے پھر آواز آئی، جیپ قریب آتی جا رہی ہے اور شاید وہ ٹرک کے پہیوں پر فائر کرنا چاہتے ہیں، آنے دو، پرواہ مت کرو، میں انہیں دیکھ لوں گا، تم سب لیٹ جاؤ، سر نہ اٹھانا۔ اور اب سچ مچ اس نے فائر کی آواز سنی اور ارما سے بولا، وہ یقیناً ہمیں آ لیں گے، اگر پہیا بیکار ہوا، راستہ اتنا تنگ ہے کہ میں کچھ کر ہی نہیں سکتا، تو پھر کس برتے پر بھاگ نکلے تھے۔ उस जगह हम चारों तरफ से घेरे जा सकते थे। पता नहीं किस किस्म की मुसीबत हम पर नाजिल हुई है। फिर फायर हुआ और इस बार जबरदस्त धमाके के साथ ट्रक को भी धचका लगा। हमीद ने ब्रेक लगाए और इंजन बंद करके अपनी तरफ का दरवाजा खोलकर करीबी चट्टान पर छलांग लगा दी। इरमा चीखती ही रह गई। हमीद बंदरों की सी फुर्ती का मुजाहरा करता हुआ ऐसे पत्थरों की ओट में जा पहुंचा, जहां से उन लोगों को बखूबी देख सकता, लेकिन खुद उसके देख लिए जाने का खदशा नहीं था। जीप ट्रक के करीब आ रुकी और इस पर से चार आदमी उतरे। एक के हाथ में राइफल थी, उसने राइफल की नाल से उन सबों को ट्रक से उतरने का इशारा किया। हमीद का हाथ बुगली होलिस्टर की तरफ गया था, वो सब ट्रक से उतार लिए गए। जीप वाले मकामी बाशिंदे थे और शायद अंग्रेजी नहीं समझते थे, इसलिए उन्होंने इशारों के जरिए उनसे मालूम करने की कोशिश की कि सातवां आदमी कहाँ गया। हमीद ने देखा कि वो लोग इसी तरफ इशारा कर रहे हैं जिधर से गुजरकर वो यहाँ तक पहुँचा था। राइफल वाला आगे बढ़ा और चट्टान पर चढ़ने लगा। हमीद जानता था कि वो रास्ता उसे भी बिल आखिर वहीं पहुँचाएगा जहाँ वो खुद छुपा बैठा था। उसने होलिस्टर से रिवॉल्वर निकाला और आहिस्ता आहिस्ता उस मकान की तरफ बढ़ने लगा जहाँ पहुँच कर आने वाला उसकी तरफ मुड़ता। यहाँ भी वो पत्थरों की ओट में छुप कर उसका इंतजार कर सकता था। हमीद उसके कदमों के नजदीक होते हुई चाप सुन रहा था। फिर जैसे ही उसने पत्थरों की ओर से सर निकाला, हमीद ने पूरी कुव्वत से रिवॉल्वर का दस्ता रसीद कर दिया। ये ऐसी ही जर्द थी कि वो न सिर्फ मुंह के बल नीचे आ रहा बल्कि बेहिस्सो हरकत भी हो गया। हमीद ने बड़ी फुर्ती से उसकी जामा तलाशी ले डाली। कोट की जेब से राइफल का साइलेंसर बरामद हुआ, उसके अलावा और कोई काम की चीज न थी। फिर उसने उसकी राइफल पर कब्जा किया और कारतूसों की पेटी भी उतार ली। अपना रिवॉल्वर होलिस्टर में डालकर उसने राइफल की नाल पर साइलेंसर फिट किया और कारतूसों की पेटी शाने पर डालकर फिर उसी मकान की तरफ पलटा जहाँ से नीचे वालों को साफ देख सकता था। जीप वालों में से दो आदमी उसके साथियों के हाथ बांध रहे थे और तीसरा रिवॉल्वर ताने खड़ा था। हमीद ने राइफल से जीप के एक पिछले पहिए का निशाना लेकर फायर कर दिया। टायर धमाके के साथ फटा और वो उछल पड़े। तीसरे आदमी के हाथ से रिवॉल्वर गिर गया था। हमीद फिर खामोश हो बैठा। बौखलाए हुए अंदाज में उस आदमी ने दोबारा रिवॉल्वर उठाया और चारों तरफ देखने लगा। साथ ही वो चीख चीख कर अपने दोनों साथियों से कुछ कह भी रहा था। उनमें से एक अपनी मसरूफियत तर करके जीप की तरफ आया, चंद लम्हे फटे हुए टायर का जायजा लेता रहा, फिर जैक लगाकर पहिया निकालने बैठ गया। दूसरा हमीद के साथ ही मर्दों के हाथ उनकी पुश्त पर बांध चुका था। हमीद का ख्याल था कि वो सिर्फ लड़कियों को ले जाने की फिक्र में है, मर्दों को वही छोड़ जाएंगे। ट्रक के ड्राइवर ने इलाके के किसी खान का तذکرہ किया था, लेकिन ये लोग इन कबाइल से ताल्लुक रखने वाले नहीं मालूम होते थे जिनके सरबरा खान कहलाते हैं। इन अतराफ में एक कौम ऐसी भी आबाद थी जो किसी कदर महजब हो जाने के बावजूद भी खबीस अरवाह की परस्तिश करती थी और इसके अफराद अपनी कलाइयों पर उन्हीं खबीस अरवाह की अलामती तस्वीरें गुदवाते थे। हमीद ने कुछ देर पहले जिस आदमी को जेर किया था उसकी कलाइयों पर ऐसी तस्वीरें नजर आई थी। इस कौम में औरतों की कमी थी, इसलिए औरतों का अगवा उनके यहाँ एक तरह की मजहबी रिवायत की हैसियत रखता था। हमीद खामोशी से हालात का जायजा लेता रहा। जीप का पहिया बदलने में बड़ी फुर्ती का मुजाहरा किया गया था। फिर वो तीनों लड़कियों के करीब आ खड़े हुए। बूढ़ा चीख चीख कर गालियाँ बक रहा था और उसके साथी भी उन्हें बुरा भला कह रहे थे और इस बात पर झल्ला रहे थे कि उन्हें अपने माफियुल जमीर से आगाह नहीं कर सकते थे। दफतन हमला आवरों ने उस चट्टान की तरफ देखना शुरू किया जिस पर कुछ देर पहले उनका चौथा साथी चढ़ा था। हमीद समझ गया कि उनमें से कोई ना कोई फिर इधर ही का रुख करेगा, लिहाजा उसने बेहोश आदमी को रास्ते के सामने से हटा देने में बड़ी फुर्ती दिखाई और वहीं एक तरफ दुबक कर किसी और की आमद का इंतजार करने लगा। उसका अंदाजा गलत नहीं था। थोड़ी ही देर बाद उसे कदमों की चाप सुनाई दी, लेकिन उस बार आने वाला मोहतात मालूम होता था। अंधाधुंध नहीं चल पड़ा था, दो चार कदम चलता और फिर रुक जाता, लेकिन उसे आना तो इसी तरफ पड़ता था। हमीद सब्र सुकून के साथ उसका मंतजर रहा और फिर जैसे ही वो जद पर आया उसने हमला कर दिया। इस बार उसने राइफल के कुंदे से हरीफ के सर पर भरपूर जरब लगाई थी। उसके हलक से निकलने वाली चीख दूर तक सन्नाटे में फैलती चली गई। फिर वो भी ना उठ सका, लेकिन हमीद उसका अंजाम देखने के लिए वहाँ रुका नहीं था। दूसरे शिकार की चीख नीचे वालों ने जरूर सुनी होगी, लिहाजा फिर उन पर नजर रखने की जरूरत थी। ये हकीकत है कि इसकी चीख पर उसके दोनों साथी बौखलाकर चट्टान की तरफ दौड़ पड़े थे। अब हमीद ने राइफल कांधे पर डाली और होलिस्टर से रिवॉल्वर निकालता हुआ फिर उसी जगह पलट आया जहां उसने पहले दो शिकार किए थे। वो उसके करीब ही से गुजरते चले गए। इस बार उसने उन पर हमला ना किया, वो चाहता था कि दोनों अपने बेहोश साथियों तक पहुंच जाएं। एक तो सामने ही पड़ा था, वो इस पर झुक पड़े और जो मुड़कर देखा तो हमीद पर नजर पड़ी। वो उनकी तरफ रिवॉल्वर की नाल उठाए खड़ा मुस्कुरा रहा था। तुम दोनों भी अपने हाथ उठाओ, उसने कहा और उन्होंने मुतहयराना अंदाज में पलकें झपकाते हुए हुक्म की तामील की। अब नीचे चलो, अगर जरा बराबर भी शरारत की तो जानों से हाथ धोने पड़ेंगे। वो इसी तरह हाथ उठाए हुए आगे बढ़े। हमीद उन्हें सड़क पर उतार ले गया और गरज कर बोला, मेरे साथियों के हाथ खोल दो। ब्रेव ब्रेव, बूढ़ा चीखा, बहादुर लड़के जिंदाबाद। उन दोनों ने उनके हाथ खोले और अब हमीद ने अपने साथियों से कहा, इन दोनों के हाथ पैर बांधकर ट्रक पर डाल दो, अब हम जीप इस्तेमाल करेंगे। तुम जो कोई भी हो पछताओगे। इनमें से एक हो राया, हमारे आदमी तुम्हें सही सलामत ना जाने देंगे। फिर उन दोनों ने किसी मजाहमत के बगैर अपने हाथ पैर बंधवा लिए थे। उन्हें ट्रक में डाल दिया गया। यहाँ रास्ता इतना कशादा था कि जीप को सड़क से आगे निकाला जा सकता था। वो सब जीप पर लद गए। हमीद ड्राइवर की सीट पर था और दोनों लड़कियां इसके बराबर बैठी थीं। बूढ़ा इन तीनों के साथ पिछली सीट पर था। रवानगी से पहले हमीद ने फेवल चेक किया था। टैंकी लबरेज थी। उसने इंजन स्टार्ट किया और बहुत एहतियात से उसे ट्रक के आगे निकाल लाया। लेकिन अब हम कहाँ जा रहे हैं, बूढ़े ने पूछा। रामगढ़ पहुँचना नामुमकिन है, फिर क्यों ना आगे ही चले, हमीद बोला। क्या आगे कोई महफूज जगह नसीब हो सकेगी? सिर्फ 20-22 मील का सफर दरपेश है, इसके बाद मैं बहुत कुछ कर सकूंगा। अरे तुम्हारा क्या कहना, तुमने तो यही बहुत कुछ कर डाला, बूढ़ा हंसकर बोला। लेकिन वो लोग क्या चाहते थे, इन तीनों में से किसी ने सवाल किया। तुम्हें वही छोड़कर सिर्फ लड़कियों को ले जाते, ब्रुबानी कौम के लोग थे। दूसरी कौमों की औरतों का अगवा इनके यहाँ इंतहाई शरीफाना कारनामे की हैसियत रखता है, लेकिन ये लोग जंगली तो नहीं मालूम होते थे। जंगली से क्या मुराद है तुम्हारी? मतलब ये कि जैसे तुम हो वैसे ही तो थे। मैं इस जुमले पर खफगी का इजहार करूं या टाल जाऊं, हमीद ने इरमा से पूछा और वो मुस्कुराकर बोली, मैं तो तुम्हें जंगली ही समझती हूं। उनके इन दोनों साथियों का क्या हुआ जो पहले गए थे? वहीं बेहोश पड़े होंगे, मेरे हाथों पिटने वाले जल्द होश में नहीं आते। तुमने उनका असलहा भी छीन लिया, ये सलोमी की आवाज थी। राइफल ही से तो मैंने जीप का टायर फाड़ा था, तो वो भी तुम ही थे। हमीद कुछ न बोला। जीप खासी तेज रफ्तारी से रास्ता तय कर रही थी। लड़के तुम्हारा पेशा क्या है, पिछली सीट से बूढ़े ने पूछा। शिकार, वजाहत करो। खालों की तिजारत करने वाला एक फर्म का मुलाजिम हूँ, उसके लिए बड़े बालों वाले जानवरों का शिकार करता हूँ। कुछ भी हो, हर एतबार से दिलचस्प साबित हुए हो। तुम लोग मुझे इस आदमी के बारे में कुछ बताओ जो इस वक्त हम में नहीं है। ओह कोपर, पता नहीं इस बेचारे का क्या हशर हुआ हो, वो कब से तुम लोगों के साथ था। हम सब एक ही होटल में मुकीम हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम लोग इसे कब से जानते हो? इस सवाल के जवाब में किसी ने बताया कि वो उसे एक हफ्ते से जानता था और किसी ने कुछ और कम मुद्दत जाहिर की, तो इसका ये मतलब हुआ कि वो तुम लोगों के लिए भी अजनबी था। तुमने कहा कि बातें छेड़ दी, इरमा बोल पड़ी, अब हमें इससे क्या लेना। खैर खत्म करो, हमीद ने कहा और बाएं हाथ से जेब टटोलता हुआ बोला, इस भागदौड़ में मेरा पाइप कहीं गिर गया, अब मैं क्या करूं? ये तो बुरा हुआ, क्या तंबाकू भी नहीं है, इरमा ने पूछा। पाउच तो मौजूद है। तब तो काम चल जाएगा, अंकल के पास सिगरेट का कागज होगा, वो खुद ही रोल करते हैं। मैं सिगरेट रोल करने के लिए गाड़ी नहीं रोक सकता, मैं रोल कर दूंगी। ऐसे जानबाज हीरो के लिए क्या कुछ नहीं किया जा सकता, इरमा हंसकर बोली। फिल्मों में तो लड़कियां आशिक हो जाती हैं। क्यों इस शरीफ आदमी का मजाक उड़ा रही हो, सलोमी का लहजा गुस्सीला था। इतने में बूढ़े ने हमीद को मुखातिब करके कहा, मिस्टर गुलबर्ट पेशाब करना चाहते हैं। देखो अब कहीं रुकना खतरे से खाली नहीं होगा, हमें जल्द अज जल्द गुलबार पहुंच जाना चाहिए। तुम पागल तो नहीं हो गए, मुझे तकलीफ हो रही है, इन तीनों में से एक गुर्राया। अच्छा मिस्टर गुलबर्ट, हमीद ने तवील सांस ली, जल्द ही फारग होने की कोशिश करना। उसने जीप की रफ्तार कम कर दी और फिर उसे एक किनारे रोक दिया। गुलबर्ट ने न सिर्फ जीप से छलांग लगाई बल्कि सड़क के नीचे उतर कर ढलान में दौड़ता चला गया। अरे ये कहाँ भागा जा रहा है, सबने बेयक वक्त कहा। लार्ड जोपनडेल ढलान से उतरकर वो बिखरे हुए बड़े बड़े पत्थरों की ओट में गायब हो गया। ओह बूढ़ा हंसकर बोला, बहुत शर्मीला मालूम होता है। हैरत अंगेज भी, हमीद ने बुरा समूह बनाकर कहा। ऐसी सूरत में छलांगे लगाना मुझ जैसे जानबाज हीरो के लिए भी नामुमकिन हो जाता, जरा देखना कहीं सीट ही पर तकलीफ रफा ना हो गई हो। कोई कुछ न बोला। इसके बाद हमीद ने बूढ़े से सिगरेट का कागज मांगा और पाउच से तंबाकू निकालकर रोल करने लगा। 2-3 मिनट गुजर गए लेकिन गुलबर्ट की वापसी ना हुई। फिर इन दोनों ने भी जीप से उतरना चाहा। नहीं, हमीद मुड़कर उन्हें घूरता हुआ बोला, तुम्हें सीट ही पर तकलीफ रफा करना पड़ेगी। क्या बकवास कर रहे हो, देखें वो कहाँ गया, मैं तुम्हारी वापसी का इंतजार नहीं करूँगा। तो क्या हम उसे यहीं छोड़ जाएं? अच्छी बात है, तुम में से सिर्फ एक जाएगा। इस पर दोनों को गुस्सा आ गया, लेकिन जीप से सिर्फ एक ही उतरा और ढलान में उतरता चला गया। आखिर ये सब क्या हो रहा है? इरमा तवील सांस लेकर बोली, सब मेरी बदअमालियों का नतीजा है, हमीद ने गुस्सीली आवाज में कहा। न आज घर से निकलता और न इस मुसीबत में गिरफ्तार होता। क्यों निकले थे तुम्हारे लिए? हमीद आहिस्ते से बोला। अंकल, इरमा ने बूढ़े को मुखातिब किया, अब ये मुझे हीरोइन बनाने की कोशिश कर रहा है। खत्म करो ये मजाक। ओ देखो, वो तन्हा वापस आ रहा है। गुलबर्ग की तलाश में जाने वाला सचमुच तन्हा वापस आ रहा था। उसके चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार थे। वो करीब आकर बोला, उसका तो कहीं पता नहीं। बैठ जाओ, हमीद बोला। पिछली सीट पर तीन ही आदमी आराम से बैठ सकते हैं, तुम चार थे। पता नहीं तुम कैसे आदमी हो, वो बिगड़कर बोला। तुम भी जहन्नम में जाओ, हमीद ने कहा। इंजन स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही मालूम हुआ था जैसे वो उसे भी यहीं छोड़ जाएगा। क्या करते हो? इरमा ने उसका गियर की तरफ बढ़ता हुआ हाथ पकड़कर कहा। फिर क्या करूं, इनका तो दिमाग चल गया है। इतने में वो पिछली सीट पर बैठ चुका था। जीप फिर चल पड़ी। आखिर ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? सिलोमी ने मुस्तरबाना अंदाज में कहा। वो कमगो और संजीदा मालूम होती थी। दफतन हमीद ने बुलंद आवाज में कहा, इस वक्त तुम में से कौन सबसे ज्यादा खायफ है? कोई कुछ ना बोला। हमीद ने फिर अपना सवाल दोहराते हुए कहा, अगर मुझे इसका जवाब ना मिला तो मैं सबको यहीं छोड़कर आगे बढ़ जाऊंगा। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? बूढ़े की आवाज आई। तुम में से कोई अच्छी तरह समझता है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं तो कतई नहीं समझा, बूढ़े ने कहा और इन दोनों की तरफ देखने लगा। वो खामोश बैठे रहे। आखिर बूढ़े ने उस आदमी को मुखातिब किया जो गुलबर्ग की तलाश में गया था। गुलबर्ग इस तरह क्यों भाग गया? मैं क्या बता सकता हूँ? तुम्हारा क्या ख्याल है? बूढ़े ने दूसरे से पूछा। जहन्नम में जाए, सब कुछ, वो गुस्सीले लहजे में बोला। ना मुझे कॉपर से कोई दिलचस्पी है और ना गुलबर्ग से। इस तफरी का मशवरा किसने दिया था? जफतन हमीद ने पूछा। हम सभी शामिल थे इसमें, इरमा ने कहा। घोड़ा सवारी की तजवीज किसकी थी? ठहरो, मुझे सोचने दो, बूढ़े की आवाज आई। मेरा ख्याल है कि ये तजवीज गुलबर्ग ने पेश की थी। गुलबर्ग के ताल्लुकात भी नए थे या पुराने? मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं जानता, अलबत्ता ये दोनों, बूढ़े ने कहा और उनकी तरफ देखने लगा। उन दोनों ने भी इससे लाइल्मी जाहिर की। सूरज गुरूब होने से कबल ही वो गुलबर्ग पहुँच गए। जब उनकी गाड़ी चकराती हुई इस वादी में उतर रही थी तो ऐसा लगता था जैसे वो किसी प्याले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हों। और इरमा ने खुश होकर कहा था, ये हादसा ना होता तो हम ऐसी खूबसूरत जगह क्यों कर पहुंचते? चारों तरफ सरसब्ज पहाड़ियां थी, जगह जगह खुश रंग फूलों की झाड़ियां बिखरी नजर आईं। हमीद जीप को सीधा पुलिस स्टेशन की तरफ लेता चला गया था। फिर आधे घंटे बाद जब वो वहां से डाक बंगले के लिए रवाना हुए तो बूढ़े ने हमीद से कहा, मैं तुम्हारी जबान समझ नहीं सकता, लेकिन फिर भी मेरा अंदाजा है कि पुलिस ऑफिसर तुमसे खायफ नजर आ रहा था। अरे वो कुछ नहीं, बहुत शरीफ आदमी मालूम होता है, बेचारा, हमीद हंसकर बोला। मैंने भी ये महसूस किया था, इरमा ने झुककर उसके कान में कहा। तुम्हें तो शुरू ही से ये एक फिल्मी कहानी महसूस होती रही है। नहीं, तुम मुझे बहुत पुरेसरार लग रहे हो। शुक्रिया। अब हम कहाँ जा रहे हैं? डाक बंगले में रात वहीं बसर करेंगे और कल यहाँ से फिर रामगढ़ वापस चलेंगे। किसी होटल में क्यों ना ठहरें? यहाँ सिर्फ एक ही अच्छा होटल है और वहाँ कोई कमरा नहीं है। मैंने पुलिस ऑफिसर की विरासत से मालूम कराया है, लेकिन हम कुछ वक्त इस होटल में जरूर गुजारेंगे। डाक बंगले में बिस्तर नाकाफी थे। पुलिस स्टेशन के इंचार्ज ने हमीद से वादा किया था कि वो उनके लिए बिस्तर फराहम कर देगा। डाक बंगले के चौकीदार को तलब करके हमीद ने रात के खाने के मुतालिक हिदायत दी और फिर वो सब एक कमरे में आ बैठे। चौकीदार ने केरोसिन लैंप पहले ही रोशन कर दिए थे। डाक बंगला हाल ही में तामीर हुआ था और यहाँ अभी बिजली की फिटिंग नहीं हुई थी। हमीद इन दोनों की तरफ से मुतमईन नहीं था। उनमें से एक बहुत ज्यादा परेशान नजर आता था। वो उसे वहाँ से उठाकर अलग ले गया। क्या बात है, तुम क्या कहना चाहते हो? वो हाँपता हुआ बोला। डरो नहीं, अब सच्ची बात मुझे बता दो, हमीद ने उसका शाना थपकते हुए कहा। कैसी सच्ची बात? तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? कोई सच्ची बात जिसकी बिना पर तुम खायफ नजर आ रहे हो? तुम्हारे अलावा और कोई भी इतना बदहवास नहीं है। मैं दिल का मरीज हूँ। अच्छी बात है, हमीद ने तवील सांस ली और इस समय फिर उसी कमरे में वापस आ गया जहाँ सब थे। चंदला में खामोश रहा, फिर गंभीर आवाज में बोला, अच्छा दोस्तों, खुदा हाफिज। क्या मतलब? बूढ़ा चौंक पड़ा। मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? ये इरमा की आवाज थी। कहीं भी चला जाऊंगा, यहाँ नहीं रहूंगा। आखिर क्यों? नहीं, तुम हमारे साथ ही रामगढ़ वापस चलोगे, हमें तन्हा नहीं छोड़ सकते, इरमा उठती हुई बोली। बात यह है कि जब तुम लोग मुझ पर एतमाद ही नहीं कर सकते तो कौन कहता है कि एतमाद नहीं करते? तुम लोगों का रवैया, पता नहीं तुम क्या कह रहे हो, मेरी समझ में तो नहीं आता। मुझे मालूम होना चाहिए कि ये सब कुछ किसके लिए हुआ है। क्या मतलब कॉपर के घोड़े का भड़कना इत्तेफाक हो सकता है, उसकी गुमशुदगी को भी हाथ से समझा जा सकता है, लेकिन गुलबर्ग के फरार को किस खाने में फिट किया जाए? कोई कुछ न बोला। बूढ़ा उसे तवज्जो और दिलचस्पी से देख रहा था। फिर उसकी नजरें उन दोनों के चेहरों पर पड़ी। अब वो भी उस शख्स को घूरे जा रहा था जिसे हमीद अलग ले जाकर गुफ्तगू कर चुका था। हम सबकी बेहतरी इसी में है कि वो शख्स खुद को जाहिर कर दे, वरना उसे भी खुद को गैर महफूज ही समझना चाहिए। मेरा पीछा छोड़ दो, वो आदमी कुर्सी में गिरकर हांफने लगा। यहाँ कोई तुम्हारा दुश्मन तो नहीं है? बूढ़ा आगे बढ़कर उसका शाना थपकता हुआ बोला। वो नहुसत कहीं भी मेरा पीछा नहीं छोड़ती। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। हमीद सिगरेट रोल करने लगा था। उसने उसे सुलगाते वक्त कनखियों से लड़कियों की तरफ देखा। उनके चेहरों पर उलझन के आसार थे। अगर वाकई कोई बात है, दूसरा आदमी बोला, तो तुम्हें फौरन जाहिर कर देनी चाहिए। अपने साथ दूसरों को भी क्यों हलाकत में डाल रहे हो? हमीद खामोशी से सिगरेट के कश लेता रहा। दफतन खौफजदा आदमी ने चेहरे से हाथ हटाते हुए कहा, तुम लोग मेरा मजहका उड़ाओगे। इस वहम में ना पड़ो, बूढ़ा नरम लहजे में बोला, हम में शायद ही कोई इतना बुरा आदमी हो कि किसी परेशान हाल का मजहका उड़ा सके। मैं कई साल से इस मुसीबत में मुब्तिला हूँ, उसने खौफजदा नजरों से चारों तरफ देखते हुए कहा। इन सबों ने अपनी कुर्सियाँ उसके करीब खिसका ली, लेकिन हमीद जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा रहा। इतने में बाहर से आवाज आई, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कौन है? हमीद चौंककर दरवाजे की तरफ बढ़ता हुआ बोला। ओह इंस्पेक्टर, आइए आइए। आने वाला गुलबार पुलिस स्टेशन का इंचार्ज था। आप लोगों के लिए बिस्तर लाया हूँ, उसने कहा और हमीद की तरफ झुककर आहिस्ते से बोला, जिस जीप पर आप आए हैं ये 4 माह पहले गुलबार ही से चुराई गई थी। ओह, आखिर इन बुर्दबानियों को इतना सर उठाने का मौका क्यों दिया जा रहा है? मैं उनके खिलाफ बराबर रिपोर्टें भेज रहा हूँ, लेकिन उनका नोटिस ही नहीं लिया जाता। खैर, अब देखेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लायक और भी कोई खिदमत हो तो बेतकल्लुफ होकर फरमाइए। आपने सड़क बंद होने की इत्तला रामगढ़ भिजवाई है या नहीं? जी हाँ, मैंने वहाँ फोन किया था। उन्हें इससे पहले ही इत्तला मिल चुकी है और घोड़ों की लाशें हटवाने का इंतजाम कर रहे थे। मेरा ख्याल है अब तक सड़क साफ हो चुकी होगी और उन्होंने ट्रक पर भी कब्जा कर लिया होगा। कल हमें 10 बजे तक यहाँ से रवाना होना है। आप फिक्र ना कीजिए, मैं एक माइक्रो बस लाया हूँ और जीप खुद ले जा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, हमीद ने मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा। इंस्पेक्टर रुखसत हो गया। कोई खास बात? बूढ़े ने हमीद से पूछा। नहीं, वो हमारे लिए बिस्तर लाया था। कल 10 बजे तक हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे। उसके बाद वो लोग फिर इसी आदमी की तरफ मुतवज्जो हो गए। तुम क्या सोच रहे हो? बूढ़े ने उसे खातिब किया। मेरी समझ में नहीं आता कि ये कहानी कहाँ से शुरू करूँ। कहीं से भी शुरू कर दो, कड़ियाँ मिलाना मेरा काम है, हमीद बोला और एक कुर्सी खींच कर वो उसके करीब ही बैठ गया। अगर लोग किसी भिखारी को बादशाह कहना शुरू कर दें, तो वो पहले तो मजाक समझेगा, फिर पागल हो जाएगा। उस आदमी ने ठंडी सांस लेकर कहा, खामोश हो गया। बोलते रहो, हमीद ने उसे टोका। मेरे साथ भी यही हुआ है। मैं एक फर्म का ट्रेवलिंग एजेंट हूँ जिसका सदर दफ्तर लंदन में है। मेरा नाम सिडनी स्टोकर है। मेरा बाप मतवस्त तबके से ताल्लुक रखता था। मैं भी बस कमाता खाता हूँ। किसी कदर खुशहाल महज इसलिए हूँ कि तन्हा हूँ, शादी नहीं की। चूँकि एक तिजारती फर्म से ताल्लुक रखता हूँ, इसलिए मेरे जानने वालों का हलका बहुत वसी है। करीब करीब यूरोप के हर मुल्क के लोगों से मेरी जान पहचान है। दफतन वो खामोश हो गया और बाएं पहलू पर इस तरह हाथ रख लिया जैसे दिल में दर्द उठा हो। क्या बात है? बूढ़े ने मुतरबाना अंदाज में पूछा, लेकिन वो कुछ न बोला। उसकी आंखें भी आहिस्ता आहिस्ता बंद होती जा रही थीं। अजीब सा सन्नाटा तारी हो गया। फिर बूढ़े ने उसका शाना पकड़कर हिलाया। उसने आंखें खोली लेकिन कुछ बोला नहीं। चेहरे पर कर्ब के आसार थे। पानी, वो भराई हुई आवाज में बोला। इरमा ने झपटकर अपने थैले से पानी की बोतल निकाली। 2-3 घूंट लेने के बाद वो आहिस्ते से बोला, शुक्रिया, आप लोग बहुत मेहरबान हैं। तुम मुतमईन रहो, बूढ़े ने नरम लहजे में कहा, जो कुछ मुमकिन होगा तुम्हारे लिए करेंगे। शुक्रिया, मेरी बदनसीबी मुजहका खेज है, वो उठता हुआ बोला और आहिस्ता आहिस्ता कमरे में टहलने लगा। फिर रुका और उनकी तरफ मुड़कर बोला, पुर इत्मीनान जिंदगी बसर कर रहा था कि अचानक इस बदनसीबी ने आ घेरा। 5 साल पहले की बात है, एक रात पेरिस के एक होटल में खाना खा रहा था कि एक शान शौकत वाली औरत मेरी मेज के करीब आई और मुझे एक ऐसे नाम से मुखातिब किया जो मेरे लिए बिल्कुल अजनबी था। मैंने उसकी गलतफहमी रफा करने की कोशिश की, लेकिन वो उसी पर मुसर रही कि मैं वही हूँ जिस नाम से उसने मुझे मुखातिब किया है। बड़ी मुश्किल से मैंने उससे पीछा छुड़ाया, लेकिन हकीकतन वो मेरी मुश्किलात की पहली रात थी। उसके बाद फिर तो मेरी शामत ही आ गई थी। बार बार मुख्तलिफ जगहों पर अजनबियों ने मुझे इसी नाम से मुखातिब किया और अब ये आलम है कि यहाँ तक मेरा पीछा किया गया। अब उन्होंने मुझे खौफजदा करना शुरू कर दिया है। इस तरह वो मुझसे इतराफ कराना चाहते हैं कि मैं वही हूँ जो वो मुझे समझते हैं। सिडनी स्टोकर दरवाजे के करीब खड़ा था और बूढ़ा उसे घूरे जा रहा था। आखिर वो तुमसे किस बात का इतराफ कराना चाहते हैं? हमीद ने पूछा। वो चाहते हैं कि मैं तस्लीम कर लूं कि मैं लाल जोपन डेल हूं। शट अप द फतन, बूढ़ा हलक फाड़ कर धाड़ और घोंसा तान कर उसकी तरफ झपटा, लेकिन वो तो पहले ही छलांग मारकर दरवाजे से निकल चुका था। हमीद बड़ी तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन ला हासिल। बाहर फैले हुए अंधेरे में वो कहीं गायब हो चुका था। दो तीन मिनट बाद हमीद वापस आ गया। यहाँ बूढ़ा तीसरे आदमी का गरेबान पकड़े कह रहा था, अब बताओ तुम कौन सी हरकत करोगे? मैं कुछ नहीं जानता, पता नहीं किस किस्म की बेहूदगी है। नहीं बताओ, मैं उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि तुम ये न बताओ कि आखिर तुम लोग क्या चाहते हो। मैं क्या बताऊं मिस्टर, ठोकरे मार मार कर खत्म कर दूंगा, वरना बताओ। तुम हट जाओ, हमीद उसके शान पर हाथ रखकर बोला। मैं इससे समझ लूंगा, तुम बूढ़ा गुर्राया, अगर तुम मकामी आदमी ना होते तो मैं तुमसे निबट लेता। दिमाग ठंडा रखो, हमीद ने नाखुशगवार लहजे में कहा, और उसका गरेबान छोड़कर हट जाओ। बूढ़ा उसका गरेबान छोड़कर लड़कियों के पास जा बैठा। उनके चेहरे धुआं हो रहे थे। हाँ, अब तुम मुझसे बात करो, हमीद ने सिडनी के साथी से कहा। मैं क्या बात करूं? मार मार कर अधमरा कर दूंगा। तमीज से गुफ्तगू करो मिस्टर, उसने आंखें निकाली ही थी कि हमीद ने उसके मुंह पर उल्टा हाथ रसीद कर दिया। वो दोनों हाथों से थोड़ी दबाए फर्श पर अकड़ू बैठ गया। नहीं, ये दीवानगी है, इरमा उठती हुई बोली। कोई मेरे मामलात में दखल ना दे, हमीद झल्लाकर उसकी तरफ मुड़ा। सिडनी का साथी खून थूक रहा था। वाकई ये दरिंदगी है, सलोमी भराई हुई आवाज में बोली। इरमा रुमाल से उसके होंठों से खून खुशक करने लगी थी। हमीद खड़ा उसे घूरता रहा, फिर भूड़े के करीब आकर बैठता हुआ नरम लहजे में बोला, तुम्हें क्यों गुस्सा आ गया था? इसलिए कि मैं लाल जोपन डेल हूँ, बूढ़े ने पुरवकार लहजे में कहा। क्या? हमीद की आंखें हैरत से फैल गई और वह कहलाया, लेकिन तुम तो फुटबॉलर डली हो। यह भी गलत नहीं है, अपने साथियों और सारी दुनिया में डली ही के नाम से मशहूर हूँ। मेरे साथी फुटबॉलर मुझे प्यार से डली कहा करते थे। तो ये सारा ड्रामा आपके लिए स्टेज किया जा रहा है? हाँ, उस तीसरे आदमी की हरकत से तो यही मालूम होता है। क्या चौथे को मैं जान से मार दूँ? नहीं, यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता, यह भी उन्ही लोगों में से है। हमीद उसकी तरफ मुड़ा, लड़कियों ने उसे उठाकर कुर्सी पर बिठा दिया था और वो कीनतोज नजरों से हमीद को घूरे जा रहा था। दफतन वो उसे घूंसे दिखाकर बोला, मैं तुम्हारा खून पी लूंगा, तुमने मेरी तोहीन की है। क्या ख्याल है? हमीद ने बूढ़े की तरफ मुड़कर पूछा। अब तुम खामोश रहो, मुझे सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? यही कि ये लोग क्या चाहते हैं? तुम कोई भी हो, सिडनी के साथी ने बूढ़े को मुखातिब करके कहा, लेकिन किसी खतरे में घिरे हुए मालूम होते हो। क्या सचमुच तुम्हें इन हालात से कोई सरोकार नहीं? मैं तुम लोगों को किस तरह यकीन दिलाऊं कि वो तीनों मेरे लिए इस तरह अजनबी थे जैसे तुम? उन दोनों ने भी यही बावर कराने की कोशिश की थी, बूढ़े ने तल्ख लहजे में कहा। उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? मेरा ख्याल है कि फिलहाल उसे इसके हाल पर छोड़ दो, बूढ़े ने हमीद की तरफ झुककर आहिस्ते से कहा। लेकिन मैं तुमसे ये जरूर पूछूंगा कि ये चक्कर क्या है? हमीद उसे तीखी नजरों से देखते हुए बोला, ये मेरा जाति और निजी मामला है। उन आठ घोड़ों की मौत का कौन जिम्मेदार होगा? तुम्हें उससे क्या सरोकार? देखो माई लॉर्ड, इस लहजे में गुफ्तगू ना करो, हमीद उसकी आंखों में देखता हुआ मुस्कुराया। तुम बहुत जियाले हो, लेकिन इतने भी नहीं कि मेरी बूढ़ी हड्डियों को चैलेंज कर सको। अरे तो क्या अब झगड़े ही गोते रहेंगे? इरमा झल्लाकर उनकी तरफ बढ़ती हुई बोली। झगड़ा नहीं हो रहा, हमीद ने नरम लहजे में कहा। मेरी जगह जो भी होता हकीकत मालूम करना चाहता। बहरहाल अगर तुम चाहती हो कि मैं खामोश रहूं, तो अब नहीं बोलूंगा। मेरी बात समझने की कोशिश करो अच्छे लड़के, बूढ़ा उसके शान पर हाथ रखकर बोला। इस वक्त मैं तुम्हारे अलावा और किसी पर भी एतमाद नहीं कर सकता। शुक्रिया, हमीद ने अहमकाना अंदाज में कहा और फिर जेब से तंबाकू की पाउच निकाल कर सिगरेट रोल करने की तैयारी करने लगा। वो पांचों खामोश थे। दफतन चौकीदार ने आकर पूछा, वो कितनी देर बाद खाना लगाए? حمید نے بوڑھے کو اس کی اطلاع دی. جتنی جلد ممکن ہو اس نے کہا، میں بہت بھوکا ہوں، کیا کھانے کے بعد کافی بھی مل سکے گی؟ اس کے لیے مجھے بستی تک جانا پڑے گا، حمید بولا. کافی باہر ہی چل کر پی لیں گے، حمید نے چوکیدار سے کہا کہ وہ کھانا لگائے اور پھر سڈنی کے ساتھی کی طرف متوجہ ہو گیا جو کرسی سے اٹھ کر چوکیدار کے پیچھے جا کھڑا ہوا تھا. حالانکہ حمید نے بھی اٹھ جانے میں پھرتی ہی دکھائی تھی، لیکن وہ اس پر ہاتھ نہ ڈال سکا کیونکہ چوکیدار بوکھلاہٹ میں اس کے اوپر آ پڑا تھا. غالباً بھاگنے والے نے ہی اسے اس پر دھکیلا تھا. لڑکیاں شور مچانے لگیں. حمید برا سا منہ بنائے ہوئے فرش سے اٹھا اور چوکیدار پر غصہ اتارنے لگا. معزز آدمی، حمید نے اس بار بھی باہر نکل کر چوتھے آدمی کو دیر تک تلاش کیا تھا. واپس آیا تو وہ تینوں کھانے کی میز پر اس کے منتظر نظر آئے. تینوں کے چہرے فکر مند تھے. حمید کے بیٹھ جانے ہی پر انہوں نے کھانا بھی شروع کیا. حمید خاموشی سے کھاتا رہا، وہ خود بولنے میں پہل نہیں کرنا چاہتا تھا. کچھ دیر بعد بوڑھے نے بڑھائی ہوئی آواز میں کہا، میں تم پر اعتماد کرتا ہوں اچھے لڑکے، تم دلیر بھی ہو اور صداقت پسند بھی، تمہاری آنکھوں میں ایمانداری کی جھلک بھی ملتی ہے. شکریہ، حمید نے خشک لہجے میں کہا. اس تعریف کا مقصد بھی بیان کر دو، تم مجھ سے بہت زیادہ خفا معلوم ہوتے ہو. وہ حمید کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا مسکرایا. چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، کیا میں تمہیں بے ایمان آدمی معلوم ہوتا ہوں؟ لارڈ زوپنڈیل اپنے کردار کی مضبوطی کے لیے سارے یورپ میں مشہور ہے. میں دہلی کو صرف ایک سپورٹ مین کی حیثیت سے جانتا ہوں. مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ کسی لارڈ گھرانے سے تعلق رکھتا ہے. اب میں تمہارے کاغذات دیکھنا چاہتا ہوں. دیکھ لینا کاغذات بھی، میں اپنے بارے میں تمہیں مطمئن کر دینے کے بعد ہی تمہیں کوئی ذمہ داری سونپوں گا. کیسی ذمہ داری؟ میرے بعد ان لڑکیوں کی ذمہ داری. تم اپنی نگرانی میں انہیں انگلینڈ واپس بھجواؤ گے. اوہ ڈیڈی، اوہ انکل، دونوں لڑکیوں کی آوازوں سے غمزدگی جھلک رہی تھی. تم لوگوں کو قطعی خائف نہ ہونا چاہیے، ہر آدمی مرنے کے لیے پیدا ہوا ہے. ہاں لڑکے، اب کوئی چٹکلا چھیڑو، ہمیں ہر حال میں ہنستے مسکراتے رہنا چاہیے. وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں کچھ دیر اپنی پوزیشن پر بھی غور کرنا چاہتا ہوں. پھر کوئی کچھ نہ بولا، وہ خاموشی سے کھانا کھاتے رہے. حمید سوچ رہا تھا کہ کس جنجال میں پھنس گیا. ایسے حالات میں ان لڑکیوں سے زندہ دلی ہی فضول ہے، پھر وہ کیوں خواہ مخواہ اپنا وقت ضائع کرے. لیکن یہ زوپنڈیل آخر ہے کیا بلا، اور خود کس قسم کے خطرات سے دوچار ہے؟ کھانا ختم کر کے زوپنڈیل بولا، اب کافی کی کیا رہے گی؟ کافی کے لیے باہر ہی چلنا پڑے گا، حمید نے بے دلی سے کہا. ضرور چلیں گے، کیوں؟ اس نے لڑکیوں کی طرف دیکھا. مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں کہیں نہ جاؤں گی، سلومی بولی. میری توہین نہ کرو، بوڑھے نے سخت لہجے میں کہا. میں اپنی بیٹی سے اس قسم کے جملے کی توقع نہیں رکھتا، لیکن ڈیڈ یہ سب کیا ہے؟ یہ لوگ تمہارے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ یہ ایک راز ہے اور میں اسے راز ہی رکھنا چاہتا ہوں، لیکن یقین کرو ان میں سے کوئی مجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. حمید بس اس کی باتیں سنے جا رہا تھا. اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ اب کسی معاملے میں دخل نہ دے گا. کچھ دیر بعد بوڑھا اس سے مخاطب ہوا، تم کیا سوچنے لگے؟ کچھ نہیں مائی لارڈ، میں بڑا خوش قسمت ہوں، آج تک کوئی لارڈ نہیں دیکھا تھا. ویسے لارڈ کلائیو سے لے کر لارڈ ماؤنٹ بیٹن تک کے حالات تاریخ میں پڑھ رکھے تھے. سوچتا تھا کہ یہ مخلوق کس قسم کی ہوتی ہوگی. بور مت کرو، وہ ہاتھ اٹھا کر بولا، میں کبھی سیاست میں نہیں رہا، فٹ بال کی وجہ سے ہمیشہ عوامی زندگی بسر کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج تم مجھے اس حال میں دیکھ رہے ہو. مائی لارڈ، اپنا پاسپورٹ نکالیے، حمید نے سخت لہجے میں کہا. میرے کاغذات رام گڑھ میں میرے اقامتی ہوٹل میں موجود ہیں. دفتر سلومی بول پڑی، ڈیڈی آخر تم کس بنا پر اس آدمی پر اعتماد کرنے لگے ہو؟ اس کی آنکھوں میں مجھے صرف معصومیت اور شرارت نظر آتی ہے، شیطنیت نہیں. شکریہ مائی لارڈ، میں بار بار شکریہ ادا کرتا ہوں. تو آپ سب کافی پینے چلیں گے یا صرف میں جا کر کافی کا ایک ڈبہ خرید لاؤں؟ میں تمہیں تنہا نہیں جانے دوں گا، تم ان وحشیوں سے دشمنی مول لے بیٹھے ہو. ہو سکتا ہے وہ ہمارا تعاقب کرتے ہوئے یہاں تک آ پہنچے ہوں. میری فکر نہ کیجئے مائی لارڈ، جب میرے داہنے ہاتھ سے دھماکہ ہوتا ہے تو میں یہی محسوس کرتا ہوں جیسے میں نے ایک خوبصورت نظم لکھ دی ہو. हम सब चलेंगे, इरमा उठती हुई बोली। मैं तुमसे हमेशा खुश रहा हूँ इरमा, मेरा इतना ज्यादा असर सिलोमी में आना चाहिए था, मैं डरपोक ही रहकर खुश रह सकती हूँ, सिलोमी ने नाखुशगवार लहजे में कहा। अच्छी बात है, तो तुम दोनों जाओ, जोपन डेल ने इरमा और हमीद को मुखातिब करके कहा। थर्मोस लेते जाओ, हम दोनों के लिए लेते आना। हमीद ने जेब में गाड़ी की चाबी टटोली जो उसे पुलिस ऑफिसर से मिली थी। इरमा उसके साथ जाने पर आमादा थी। ये राइफल और कारतूसों की पेटी अपने पास रखो, हमीद ने जोपनडेल से कहा और फिर चौकीदार से भी उनका ख्याल रखने को कहता हुआ बाहर निकल आया। माइक्रोबस कंपाउंड में मौजूद थी, वो गुलरेज की तरफ रवाना हो गए। ये गुलबार का सबसे अच्छा होटल था और यहाँ ज्यादातर गैर मुल्की टूरिस्ट कयाम करते थे। पता नहीं क्यों अंकल तुम पर इस कदर एतमाद कर बैठे हैं, हालांकि तुम तो हमारे लिए बिल्कुल ही अजनबी हो, इरमा ने कहा। लेकिन मेरा एतमाद मुतजलजल हो गया है। क्यों, क्या मतलब? क्या तुमको इलम था कि यहाँ ऐसे हालात से दो चार होना पड़ेगा? हरगिज नहीं, वरना घोड़ा सवारी की क्यों ठहरती? लेकिन शायद तुम्हारे अंकल को इलम था, इसके बारे में मैं क्या कह सकती हूँ? और अगर उन्हें इलम था तो तुम दोनों को साथ ना लाना चाहिए था। ये स्पोर्ट्समैन स्पर्ट नहीं दीवानगी है, मैं खुद भी एडवेंचर की रसिया हूँ। ये बात नहीं है, तुम अच्छी तरह समझती हो कि औरतें तलकर खाई नहीं जाती। क्या मतलब? अगर ब्रूबानी तुम्हें पकड़कर भी ले जाते तो नाजबरदारी ही करते, गाड़ी में जोत ना देते। अब तुम बकवास पर उतर आए हो। बकवास पर आइंदा साल नोबल प्राइज ले रहा हूँ। मैं अभी तक नहीं समझ सकी कि तुम किस किस्म के आदमी हो। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें ये इतला देकर नहीं भागूंगा कि तुम मलका विक्टोरिया हो। ओह, तो तुम्हें अंकल के लॉर्ड जोपन डेल होने में शुबा है? अगर मुझे शुबा भी है तो उनका क्या बिगड़ेगा? मैं तो सिर्फ यही जानता हूँ कि तुम इरमा हो। तुम कुछ देर खामोश रहो, शायद ढंग की बातें करने लगो। हमीद निचला होंठ दांतों में दबाए वंड स्क्रीन की तरफ मुतवज्जो रहा। गुलरेज पहुँच कर वो हाल में दाखिल हुए। यहाँ बड़ी रौनक थी, मध्यम सुरों में साज बज रहे थे। एक खूबसूरत वेट्रेस ने उनकी रहनुमाई एक खाली मेज तक की। यहाँ का माहौल बहुत हसीन है, इरमा बड़बड़ाई। हमीद कुछ न बोला, वो वेट्रेस को थर्मोस देते हुए अपने लिए भी काफी का ऑर्डर दे रहा था। वेट्रेस के चले जाने के बाद इरमा उसकी आँखों में देखती हुई हंसी और बोली, अब फिर बोलना शुरू कर दो, देखूं कुछ तब्दीली हुई या नहीं। मर्द हमेशा एक ही बात रटते रहते हैं, तब्दीली का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे अपने बारे में कुछ और भी बताओ। मैं उन दोनों के बारे में सोच रहा हूँ। उनके सामने से हट जाने के बाद मैंने उन्हें यकसर बुला दिया है। मैं तो पल पल की जिंदगी गुजारती हूँ, ना मुझे गुजरे हुए लम्हे की परवाह होती है और ना आने वाले लम्हे की फिक्र। बस जो कुछ है तो यही लम्हा है, ये लम्हा, ये लम्हा। तुम्हारी आँखें बहुत खूबसूरत हैं, मुझे अपनी आँखों से इसके अलावा और कोई दिलचस्पी नहीं कि मैं उनसे देख सकता हूँ। तुम्हें देख रहा हूँ, तुम खूबसूरत हो और वो उस मेज वाली लड़की तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत है, और वो उधर जो बैठी है तुम दोनों ही से ज्यादा भली लगती है। चलो एक बात तो तय हुई कि हम दोनों ही खूबसूरती से प्यार करते हैं। मुझे इस खूबसूरत गुलदान से कोई दिलचस्पी नहीं, औरत ही होनी चाहिए। इस नुक्ते पर हम मुत्तफिक नहीं हो सकेंगे। मुझे मर्दों के अलावा खूबसूरत कुत्ते भी पसंद हैं। कुत्तों की महबूबाएं भी बेजुबान नहीं होती, हमीद मुस्कुराकर बोला। अगर औरतों की जबानें खींच ली जाएं तो वो देवियां कहलाएंगी। बहुत जहर भरा हुआ है तुम्हारे जहन में औरतों के खिलाफ, क्या बहुत ज्यादा धोखे खाए हैं? धोखे, हमीद कुछ सोचता हुआ बोला। धोखे वही खाता है जिसे हकीकत की तलाश हो, क्योंकि हकीकत उसी धोखे को कहते हैं जिस पर से पर्दा ना उठ सके। बस, वो मेज पर हाथ मारकर बोली, फलसफे के लिए अंकल जोपनडेल ही बहुत हैं। अब तुम बोर करोगे। अंकल जोपनडेल मुझे पसंद हैं। मुझे हर वो आदमी पसंद है जो शिकस्त खा जाने के बावजूद भी शिकस्त तस्लीम ना करे। मैं नहीं समझी, अंकल जोपनडेल बूढ़े हैं लेकिन उन्होंने खुद पर बुढ़ापा तारी नहीं किया, हमीद ने उसे कनखियों से देखते हुए कहा। लेकिन वो उसकी तरफ नहीं देख रही थी। अचानक वो उसकी तरफ मुड़कर बोली, वो देखो बाईं जानिब वाली मेज पर, ये तो वही आदमी है। कौन ओह तुमने ठीक पहचाना, ये तो उन्हीं दोनों में से एक है जिन्हें बांधकर हम ट्रक में डाल आए थे, हमीद ने कहा और वेटरेस की तरफ मतवज्जो हो गया जो काफी की ट्रे मेज पर रख रही थी, थर्मोस भी भर लाई थी। हैरत है कि तुमने उसे पहचान लिया, हमीद उसके लिए काफी उंडेलता हुआ बोला। हालांकि उस वक्त वो हर लिहाज से एक शाइस्ता आदमी मालूम हो रहा है। मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, काबिले रश्क कहना चाहिए, पहले भी मेरी उचटती सी नज़र इस पर पड़ी थी लेकिन मैं नहीं पहचान सका था। ये हकीकत भी थी कि वो उस वक्त कोई नीम वेशी बुरोबानी नहीं मालूम होता था। उसकी कमीज बेदाग सफेद थी, बेहतरीन प्रेस सूट पहन रखा था जिसके लिए टाई के इंतखाब में भी सलीका पाया जाता था। क्या ख्याल है इरमा बोली, क्या हमें दोबारा घेरने की कोशिश की जा रही है? मुमकिन है, क्या तुम गाड़ी ड्राइव कर सकोगी? पता नहीं ऐसे हालात में खुद एतमादी कायम रख सकूंगी या नहीं। अच्छा तो सुकून से काफी खत्म करो, मैं उसका भी इंतजाम किए लेता हूँ। कैसे हालात से दो चार होना पड़ा है, वो तवील सांस लेकर बोली। परवाह मत करो, तुम क्या करोगे? वो तन्हा तो नहीं होगा, हरगिज नहीं, बस देखती जाओ। आखिर बताओ ना, इरमा झिझला गई। गीली मिट्टी से एक पुतला तैयार करूंगा और उसके बाद उसके हाथ में लकड़ी की तलवार देकर काला जादू आजमाऊंगा। तुमने यहाँ के कदीम जादूगरों के बारे में तो पढ़ा ही होगा जो ज्यादातर तुम्हारे ही देश के मुसन्निफों को मिला करते थे। फजूल बातें ना करो, अगर उन्होंने हमारा ताकुब किया है तो अंकल भी खतरे में होंगे। तो फिर तुम इस सिलसिले में क्या कर सकोगे? काफी की प्याली खाली करके वो उठ गया। कहाँ चले? जरा बाथरूम तक, तुम मुतमईन रहो, यहाँ इस हाल में वो कोई हरकत नहीं कर सकेंगे। तुम जाओ, मैं डरपोक नहीं हूँ, इरमा अकड़कर बोली। हमीद उठकर बाथरूम की तरफ रवाना हो गया। रेडीमेड मेकअप के जरिए वो अपनी शक्ल में तब्दीली कर सकता था लेकिन लिबास में तब्दीली मुमकिन नहीं थी। बुगली होलस्टर की वजह से कोट भी नहीं उतारा जा सकता था, वरना कोट तह करके हाथ पर रखता और सिर्फ स्वेटर पर ही कन्नाद कर लेता। आज तो कोट भी ऐसा नहीं था जिसे उलटकर पहना जा सकता। इस पर फिलहाल इरमा की जिम्मेदारी थी और वो ऐसे हालात में उससे अलग रह कर ही उसकी हिफाजत कर सकता था। बाथरूम के आईने में देख कर उसने अपने बालों की आरास्तगी के अंदाज में तब्दीली की और रेडीमेड मेकअप वाले स्प्रिंग नाक के नथनों में फिट कर लिए। फिर बाथरूम से निकलकर उसने इरमा के करीब ही की एक मेज संभाल ली थी। तकरीबन 20 मिनट गुजर गए थे, इरमा बार बार घड़ी देखे जा रही थी। हमीद ने उस ब्रोबानी को देखा, पहले ही की तरह पुरसुकून नजर आ रहा था जैसे उसे किसी बात की परवाह ही ना हो। हमीद फिर अपनी जगह से उठकर काउंटर की तरफ आया और काउंटर क्लर्क से फोन मांगता हुआ बोला, पता नहीं कैसे लोग हैं, मिलने को कहते हैं और इंतजार कराते हैं। उसने फोन उठाकर काउंटर पर रख दिया। हमीद ने तेजी से पुलिस स्टेशन के नंबर डायल किए, दूसरी तरफ इंचार्ज ही ने कॉल रिसीव की थी। हमीद ने उसे मौजूदा सिचुएशन से मुतल्लिया करते हुए कहा, एक लड़की मेरे साथ है और बहुत ज्यादा खाइफ है, आप फिक्र न कीजिए, दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं आ रहा हूँ। हमीद ने रिसीवर रख कर तवील सांस ली और फिर उस मेज की तरफ पलट आया जहाँ से उठा था। अब वो सचमुच खाइफ नजर आ रही थी, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी थी। हमीद ने सोचा उसे इस तरह तन्हा ना छोड़ना चाहिए, फिर पुलिस स्टेशन से मदद भी तलब की है। तन्हा होता तो अलबत्ता यही जरूरी होता कि उससे अलग रहकर उसकी देखभाल करे। उसने एक बार फिर बाथरूम का रुख किया और नथनों से स्प्रिंग निकाल कर इरमा की मेज की तरफ वापस आया। वो उसे देखकर खिल उठी। मैं उलझन में मुब्तिला थी, वो हाँपती हुई बोली, क्यों कैसी उलझन? मैं सोच रही थी शायद मुझे छोड़कर भाग गए, तन्हा भागने का क्या फायदा, नहीं सोचना पड़ता है, आखिर कब तक हमारे लिए खुद को खतरात में डालते रहोगे? जब तक खतरा न टल जाए या इसी तरह जिंदगी खत्म ना हो जाए। ऐसे ही हो, वो उसकी आंखों में देखती हुई मुस्कुराई। वो कुछ ना बोला और फिर उस ब्रोबानी की तरफ देखने लगा जो अब पूरी तरह उनकी तरफ मतवज्जो था। एक बार हमीद से भी नजर मिली और उसने महसूस किया जैसे वो उसकी हड्डियां चबा डालना चाहता हो। अब बैठे क्या सोच रहे हो दफतन? इरमा बोली, हमें वापस चलना चाहिए, मैं अंकल और सिलोमी के लिए परेशान हूँ, जरा देर और ठहरो। आखिर क्यों? मसलहतन, खतरात में पड़ना मेरी हॉबी सही, लेकिन आंखें बंद करके नहीं। मैं नहीं समझी, कुछ देर खामोश भी बैठो स्वीटी, मैं ज्यादा देर खामोश नहीं रह सकती। अच्छा तो फिर अपनी मम्मी और डैडी की बातें करो, उनमें से किसी को मुर्गियां पालने का शौक भी है या नहीं? क्या मतलब? इरमा के लहजे में हैरत थी। मुर्गियां? मुर्गियां नहीं समझती? अब तुम बकवास पर उतर आए हो, ये भी मेरी हॉबी है। मैं समझी तुम खाइफ हो, जो दिल चाहे समझो। मैं तो इस वक्त सिर्फ मुर्गियों के बारे में सोच रहा हूँ। जब मेरे पास सोचने को कुछ नहीं होता तो मुर्गियाँ बड़ा सहारा देती हैं। क्या ख्याल है? मुर्गी अंडे देकर किसी कदर महफूज होती होगी। बस अब खामोश रहो, इरमा हाथ उठाकर घुसीले लहजे में बोली। इतने में पुलिस स्टेशन का इंचार्ज काउंटर के करीब दिखाई दिया। हमीद ने हाथ हिलाकर उसे अपनी तरफ मतवज्जो करने की कोशिश की और ठीक उसी वक्त उसकी नज़र भी उन पर पड़ी। वो सीधा उनकी तरफ चला आया। बैठ जाओ, हमीद ने दाएं जाने वाली कुर्सी की तरफ इशारा किया। और फिर जब उसने उस ब्रोबानी की तरफ इशारा किया तो पुलिस ऑफिसर बेसाख्ता चौंक पड़ा। यकीनन आपको गलतफहमी हुई है, वो हंसकर बोला था। क्या मतलब? ये तो गुलबार के एक मौजूद तरीन आदमी खानदारा हैं, लेकिन मेरी याददाश्त इतनी नापुख्ता नहीं है, हमीद ने नाखुशगवार लहजे में कहा। ये कहने की जसारत नहीं कर सकता, लेकिन दो आदमियों के दरमियान मुशाबहत तो हो सकती है, ऑफिसर बोला। हमीद ने फिर उस आदमी की तरफ देखा, वो जो कट सिगरेट सुलगा रहा था। क्या आप लोग यहाँ से उठना चाहते हैं? ऑफिसर ने कुछ देर बाद पूछा। हाँ, अब हमें चलना चाहिए। तो चलिए, मेरी गाड़ी आपकी गाड़ी के पीछे रहेगी। मैं यही चाहता था कि पीछे से कोई हमला ना हो। वो दोनों उठकर बाहर आए। हमीद ने इस दौरान में बिल अदा कर दिया था। गाड़ी में बैठ जाने के बाद इरमा ने पूछा, वो क्या कह रहा था? कोई खास बात नहीं, वो उसे नजर में रखेगा। पता नहीं अंकल पर क्या गुजरी हो, देखे लेते हैं चलकर। आज का दिन जिंदगी भर याद रहेगा और मेरा मरकजी किरदार होगा इस याद में। क्या ये जरूरी है कि तुम्हें भी याद रखा जाए? वो अठलाई। जरूरत ना समझो तो मुझे कोई एतराज ना होगा। तुम बुलाने की चीज तो नहीं हो। गाड़ी सुनसान सड़क पर दौड़ रही थी। तुम इंग्लिस्तान कब जाओगी? हमीद ने कुछ देर बाद पूछा। इस साल तो वापसी मुमकिन नहीं। यहाँ 2 माह गुजारने के बाद हम मशरिक बईद की तरफ जाएंगे। सफर का मकसद सिर्फ सियाहत है। बिल्कुल। डाक बंगले के करीब पहुंचकर हमीद ने रफ्तार कम कर दी। अकबनुमा आईने में पुलिस ऑफिसर की गाड़ी के हेडलैम्प नजर आ रहे थे। फिर अब बरामदे के सामने उसने गाड़ी रोक दी। इरमा और वो दोनों नीचे उतरे। पुलिस ऑफिसर की गाड़ी भी पहुंच चुकी थी और वो इंजन बंद करके उतर आया। वहम था आपका, पुलिस ऑफिसर करीब आकर बोला। कोई और गाड़ी हमारे पीछे नहीं आई। और यहाँ बरामदे में तो बड़ा अंधेरा है, ठहरिए मैं टार्च ला रहा हूँ। वो फिर अपनी गाड़ी की तरफ पलट आया। वापसी पर उसने टार्च की रोशनी बरामदे में डाली और वो आगे बढ़े। उसे एक लैंप बरामदे में भी रखना चाहिए था। पुलिस ऑफिसर नाखुशगवार लहजे में बड़बड़ आया। हमीद और इरमा आगे चल रहे थे और वो अकब से उन्हें रोशनी दिखा रहा था। जैसे ही उन्होंने सदर दरवाजे में कदम रखा, इरमा उछल कर पीछे हट गयी और रोशनी का दायरा फर्श पर ऊंधे पड़े हुए एक आदमी पर थम गया। ये डाक बंगले का चौकीदार था। अंकल, इरमा हलक फाड़ कर चीखी और हमीद तेजी से उस कमरे की तरफ झपटा जहां दोनों को छोड़ गया था। कमरा खाली नजर आया। 2 कुर्सियां उल्टी पड़ी थीं। एक जगह थोड़ा सा खून नजर आया। अंकल, हमीद ने फिर इरमा की चीख सुनी। पूरा डाक बंगला छान मारा गया, लेकिन सिलोमी और जोपनडेल का कहीं पता ना था। इरमा पर गशी तारी हो गई थी। हमीद पुलिस ऑफिसर को उसके पास छोड़कर उन दोनों को तलाश करता फिर रहा था। वो फिर उस जगह रुका जहाँ चौकीदार फर्श पर पड़ा था। टार्च की रोशनी उस पर डाली। उसके सर पर चोट आई थी जिससे खून भी बहा था। नब्बल देखी। इतने में पुलिस ऑफिसर भी इरमा को सहारा दिए हुए वहीं आ पहुँचा। मेरे ख्याल में आप दोनों पुलिस स्टेशन चलिए, उसने हमीद से कहा। वहीं आपके कयाम का इंतजाम कर दिया जाएगा। बेहोश चौकीदार को उन दोनों ने उठा कर माइक्रो बस में डाला और पुलिस स्टेशन की तरफ रवाना हो गए। इरमा ने चुप साध ली थी। हमीद ने भी उसे छेड़ना मुनासिब ना समझा। चौकीदार को अस्पताल में दाखिल कराने के बाद वो पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। हमीद ने टेलीफोन पर रामगढ़ पुलिस स्टेशन से रابطہ कायम किया और उसी के तवसत से फरीदी से फौरी तौर पर वायरलेस के जरिए गुफ्तगू की। रामगढ़ पुलिस स्टेशन का ऑपरेशन रूम जदीद तरीन लॉस की मवासिलाती आलात से लैस था। बद परहेजी। इरमा का चेहरा धुआं हो रहा है। अपने बयान के मुताबिक वो दो रातों से बिल्कुल नहीं सोई थी। फरीदी दूसरे ही दिन गुलबार पहुंचा था, लेकिन उससे किसी किस्म की पूछताछ नहीं की थी। आज वो उससे इस सिलसिले में सवालात करने वाला था। मेरे लिए यही इतला हैरत अंगेज थी कि तुम एक पुलिस ऑफिसर हो, इरमा ने हमीद को मुखातिब करके मुर्दसी आवाज में कहा, और अब तुम अपने किसी बॉस का जिक्र कर रहे हो। वो मुझसे ज्यादा बेजरर आदमी है, तुम मुतमईन रहो। मेरी समझ में नहीं आता कि ये सब क्या है। हो सकता है मेरे बॉस की समझ में आ जाए, अलबत्ता एक बात मेरी समझ में नहीं आई। क्या? क्या लॉर्ड ज़ोपनडेल ने उन चारों से अपना तारुफ लॉर्ड ज़ोपनडेल की हैसियत से नहीं कराया था? मैं नहीं जानती कि उनके मामलात किस नौइयत के थे। आखिर इस सवाल का मतलब क्या है? उन्होंने पहले मुझे अपना नाम डली बताया था, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि अपने जमाने का मशहूर तरीन फुटबॉलर किसी लॉर्ड खानदान से ताल्लुक रखता है। इसमें मेरा क्या कसूर है? वो बेदिली से मुस्कुराई। इतने में किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। हमीद ने उठकर दरवाजा खोला और बौखलाए हुए अंदाज में पीछे हटता हुआ बोला, आइए। और फरीदी कमरे में दाखिल हुआ। इरमा गैर इरादी तौर पर उठ गई थी। हमीद ने उसके चेहरे पर घबराहट के आसार देखे। बैठो बैठो, फरीदी ने नरम लहजे में कहा, ये मिस इरमा ज़ोपनडेल और ये मेरे चीफ कर्नल फरीदी। हाउ डू यू डू? ओके थैंक्स। फिर फरीदी हमीद से बोला, तुम्हें मेरे साथ चलना है अभी? हाँ, मैं समझा था शायद आप इससे पूछगुछ करेंगे। गलत समझे थे, फरीदी का लहजा बेहद खुश्क था। तो क्या उसे यहीं छोड़ जाएं? फरीदी उसकी बात का जवाब दिए बगैर बाहर निकल गया और हमीद ने इरमा की तरफ देखकर शाने सिकोड़े। क्या बात है? इरमा ने पूछा। तुम्हारा चीफ क्या कह रहा था? कुछ नहीं, वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहता है। मैं तन्हा यहाँ नहीं रहूँगी, ये पुलिस स्टेशन की इमारत है, यहीं तुम महफूज रह सकोगी। लेकिन मैं तन्हा नहीं रहूँगी, तुम्हारे चीफ ने तो मुझसे बात तक नहीं की। तुम कह रहे थे कि वो मुझसे पूछगुछ करने के लिए आ रहा है। मर्जी का मालिक है, मुझे उसके पास ले चलो। मैं उसे कहूँगी कि तन्हा यहाँ नहीं रह सकती। अच्छी बात है, मैं उसे बुलाए लाता हूँ, हमीद ने पीछे छुड़ाने के लिए कहा और बाहर निकल गया। फरीदी इंचार्ज के कमरे में मिला था। वो उसे बता रहा था कि दाहिना हाथ बेकार हो जाए तो बाएं हाथ से किस तरह निशाना लेना चाहिए। हमीद को देखकर इंचार्ज से बोला, अच्छा अब हम जा रहे हैं, लड़की का ख्याल रखना। वो उन्हें रुख्सत करके फाटक तक आया था। हमीद ने जीप में राइफलें और शिकार के दूसरे लवाजमात रखे देखे। बैठो, फरीदी ने उसे जीप की तरफ धकेलते हुए कहा। बैठ तो रहा हूँ, हमीद भुन्ना गया। थप्पड़ मार दूंगा अगर मुझ पर आंखें निकाली। वो तन्हा नहीं रहना चाहती। शट अप। जीप हरकत में आ गई। फरीदी खुद ही ड्राइव कर रहा था। अच्छी तरह याद करके बताओ ये लोग तुम्हें किन हालात में मिले थे? उसने थोड़ी देर बाद हमीद से पूछा। मुझे होश नहीं, नशे में थे, दो आतशा का शिकार था। तुम्हारी हालत वाकई काबिले रहम है। क्या मतलब? जो कुछ कहना चाहता हूँ पहले भी हजार बार कह चुका हूँ। मैं समझ गया, गालिबन आप यही फरमाएंगे कि लड़कियों के चक्कर में पड़कर न सिर्फ खुद आवारा हुआ बल्कि अखलाकन आपको भी होना पड़ा। क्या तुम्हें उनकी तरफ से लिफ्ट मिली थी? फरीदी ने नरम लहजे में पूछा। जी नहीं, खामखा शामत ने घेरा था। संजीदगी से गुफ्तगू करो, मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि लड़कियों की तरफ से कोई ऐसी हरकत हुई थी जिसकी बिना पर तुम उनकी तरफ मतवज्जो हुए। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वरना अब तक मैं खुद बखुद होश में आ चुका होता। फरीदी ने फिर कुछ नहीं पूछा। जीप सड़क छोड़कर एक नाहमवार रास्ते पर हो ली थी। हम कहाँ जा रहे हैं? गुलबार आए और पहाड़ी दुम्बों का शिकार न करें, बड़ी अजीब बात होगी, फरीदी ने वन शील्ड से नजर हटाए बगैर कहा।
मौजूदा समय इसी के साथ ये पार्ट अपने अख्तिताम को पहुँचा।